देखिए भाई किताब पर आगे सबक। वहैसु कानतिल कलिमाति आम्मा मिन अंतकूना कलिमतैनि हकीकतन औ हुक्मन दखल फि तारीफ मिस्लु ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन औ क़ाम अबूहु औ क़ाइमुन अबूहु फ़इन्नल अख़बार फ़ीहा मा अन्नहा मुरक्कबातुन लकिन्नहा फ़ी हुक्मिल कलिमतिल मुफ़रदति अअनी क़ाइमल अब ودخل فيه أيضا مثل جسق مهمل وديز مقلوب زيد مع أن المسند إليه فيهما مهمل ليس بكلمة فإنه في حكم هذا اللفظ। गुज़श्ता सबक में हमने कलाम की तारीफ पढ़ी और शारह जामी जो हैं उसकी तशरीह कर रहे थे भाई। साहिब काफिया ने आपको बतलाया अल कलामू मा तज़म्मना कलिमतैनी बिल इस्नादी के कलाम ऐसा लफ्ज है जो मुतज़म्मिन होता है दो कलिमों को बिल इस्नादी इस्नाद के साथ। यानी कलाम वो लफ्ज का नाम है और वो दो कलीमे होंगे और वो दो कलीमे भी ऐसे होंगे कि उनके दरमियान इस्नाद होगा। मैंने आपको बतलाया था कि कलिमा और कलाम दोनों इल्मे नहु का मौजू हैं भाई, इल्मे नहु का मौजू। लेकिन मुसन्निफ ने कलिमा को मुकद्दम किया क्योंकि कलिमा जो है वो कलाम का जुज है। कलाम किससे बनेगा? कम से कम दो कलिमों से। तो कलिमा क्या है? कलाम का जुज, और जुज मुकद्दम होता है कुल पर। जुज समझ में आएगा तो आपको कुल भी समझ में आएगा। अगर आपको कलिमा का पता ही नहीं होगा तो कलाम की जो तारीफ है वो भी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कलाम की इन्होंने क्या तारीफ की? मा तज़म्मना कलिमतैनि बिल इस्नाद। तो देखो इसमें कलिमतैन का जिक्र आया। अगर आपको कलिमतैन का ही पता ना हो तो फिर आपको कलाम भी समझ में नहीं आएगा। तो कलिमा जुज है कलाम का, इसलिए उसको मुकद्दम किया। उसके बाद फिर मैंने आपको यह बतलाया कि मुसन्निफ ने अल कलाम कहा, अल कलाम उमा तज़म्मना कहा, वल कलाम उमा तज़म्मना नहीं कहा। यानी इस जुमले का आतफ मा कबल पर नहीं किया। मैंने आपको बतलाया था एक है फसल और एक है वसल भाई। वसल का माना है मिलाना जोड़ना और फसल का माना है जुदा करना। तो जब एक जुमले का दूसरे जुमले पर आतफ किया जाए तो इसको कहते हैं वसल। यानी आपने दोनों में रबत दे दिया, जोड़ दे दिया। और जब दरमियान में हर्फ आतफ को जिक्र न किया जाए तो इसका मतलब यह है कि आपने दोनों जुमलों में फसल कर दिया, यानी जुदाई कर दी, दोनों में रबत नहीं दिया। और वसल के लिए जरूरी है कि दोनों जुमलों के अंदर मुनासिबत हो गई। तो यहां साहिब काफिया ने वल कलाम नहीं कहा बल्कि फसल किया है, वसल नहीं किया बल्कि फसल किया है। वजह इसकी ये, मैंने आपको बतलाया था कि वाव से यानी हर्फ अतफ से पहले जो आए उसको कहते हैं मातूफुन आले, और जो बाद में आए वो होता है मातूफ। तो इससे शुबा पड़ता कि शायद ये जो कलिमा और कलाम दोनों इल्मे नह का मौजू हैं, लेकिन कलिमा असल है इल्मे नह का मौजू होने में और कलाम उसके ताबे है, क्योंकि मातूफ क्या होता है? ताबे होता है। तो लिहाजा मुसन्निफ ने यहां फसल किया यह बतलाने के लिए कि कलाम जो है इल्मे नह का मौजू होने में कलिमा के ताबे नहीं है, बल्कि दोनों असल हैं इल्मे नह के मौजू होने के एतबार से। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि ये जो काफिया है ये माखूज है मुफस्सल से। मुफस्सल अल्लामा ज़मख़शरी की किताब है जो बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं भाई। और मुफस्सल को मुफस्सल इसलिए कहते हैं कि इसमें फसलें बहुत ज्यादा हैं, वो हर चीज के लिए अलग फसल लेकर आते हैं। तो बहुत ज्यादा फसलें हैं, हत्ता के बाज फसलें तो एक एक सतर पर मुश्तमिल हैं। तो साहिब काफिया ने मुफस्सल से इस काफिया को अखज़ किया, लेकिन उनको ये इतनी कसरत से फसलों का जिक्र उनको इतना नापसंद आया कि उन्होंने अपनी पूरी काफिया में एक भी फसल जिक्र नहीं की। तो वो यहां काफिया में वो क्या करते हैं कि फसल के बजाय सिर्फ हर्फ आतफ वहां नहीं लाते भाई। तो यहां भी अल कलाम के लिए हर्फ आतफ नहीं लाए, तो गोया ये भी एक अलग फसल है। पहले फसल किसकी थी? कलिमा के बारे में। अब दूसरी फसल किसके बारे में है? कलाम के बारे में। और उसकी तरफ इशारा किसके जरिए किया कि दरमियान में हर्फ आतफ को जिक्र नहीं किया, इसी ने फसल पर दलालत कर दी कि ये अलग बात है भाई, अलग बहस है भाई। तो कलाम जो है इल्म नहव की इस्तिलाह में किसे कहते हैं? अल कलामु मा तज़म्मना कलिमतैनी बिल इस्नादी, के कलाम वो लफ्ज है, कलाम ऐसा लफ्ज है जो मुतज़म्मिन हो दो कलिमों को इस्नाद के साथ। ये जो तारीफ की, ये इल्म नहव में कलाम की ये तारीफ की जाती है, यानी ये इस्तिलाही तारीफ है। फिर साहिब जामी ने आपको बतलाया कि अरबी जुबान में कलाम जो है मा युतकल्लम बिही को कहते हैं, यानी वो लफ्ज जिस पर तकल्लम किया जाए, चाहे वो कलील हो चाहे कसीर, चाहे एक लफ्ज हो या एक से ज्यादा, चाहे जुमला हो या जुमला ना हो, चाहे वो बामाना लफ्ज हो चाहे बेमाना लफ्ज यानी मोहमल ही क्यों ना हो, जिस पर भी तकल्लम कर लिया जाए उसको क्या कहते हैं? कलाम कहते हैं। उसके बाद यहां पर मैंने बतलाया था कि ये जो मा तज़म्मना है, इस मा तज़म्मना को मा मौसूला भी बना सकते हैं और मा मौसूफा भी। फर्क सिर्फ यह है कि मा मौसूला मारिफा होता है बमाने अल्लज़ी के, और मा मौसूफा जो है वो नकेरा होता है बमाने शय उनके, यानी कोई चीज, और दोनों में आगे एक जुमला आता है, तो अगर मा मौसूला हो तो वह जुमला उसका सिला कहलाएगा, और अगर वह मा मौसूफा हो तो वह जुमला उसकी सिफत कहलाएगा। और मैंने आपको बतलाया कि जुमले को जब भी किसी चीज से जोड़ना हो तो दरमियान में रबत जरूरी है। तो एक फर्क तो यह होगा कि मा मौसूला मारिफा होता है और मा मौसूफा नकेरा होता है। दूसरा फर्क दोनों में यह है कि मौसूल का जो सिला होता है उसका कोई महल्ले एराब नहीं, लिहाजा अगर इस मां को मौसूला बनाओ तो आगे जो जुमला है तज़म्मना कलिमतैन बिल इस्नाद, ये इसका सिला बना। अगर आपसे कोई पूछे इसका महल्ले एराब क्या है तो आप कहेंगे ला महल्ल लहु मिनल एराब, क्योंकि सिले का कोई महल्ले एराब नहीं होता, एराब के लिए कोई आमिल चाहिए, इसके अंदर कोई चीज आमिल नहीं है भाई। और अगर इस मां को मौसूफा बनाओ तो फिर याद रखो मौसूफ पर जो एराब आता है वही एराब किस पर आता है? सिफत पर भी। और ये मां मौसूफा खबर है, मरफू है, तो तज़म्मना कलिमतैन बिल इस्नादी, ये पूरा जुमला भी क्या होगा? मरफू होगा, सिफत होगा मां मौसूफा की। फर्क समझ में आ गया? मैंने बताया इस मां को मौसूला भी बना सकते हो और मौसूफा भी बना सकते हो। शारह जामी ने इस मां को मौसूफा बनाया, किस तरह पता चला? कि उन्होंने आगे आई लफ्जुन तज़म्मना, लफ्जुन नकेरा निकाला भाई, और मालूम हुआ ये मां नकेरा है और नकेरा मां तो मां मौसूफा होता है। और नीज मैंने बताया था ये मा शय उनके माना में होता है, लेकिन साहिब जामी ने लफ्जुन निकाला, यानी इस मां का मिसदाक बतला दिया कि मां से दुनिया की हर चीज हर शय मुराद नहीं, बल्कि यहां पर बात चल रही है कलाम की, और कलाम किसको कहते हैं? लफ्ज को कहते हैं, हर चीज को नहीं कहते। तो ये लफ्जुन ये इसका मिसदाक बतला दिया कि ये किस पर सादिक आ रहा है, इसे मुराद क्या है भाई। तो इसको मां को उन्होंने मां मौसूफा बनाया। और नीज इस सूरत में खबर की असल पर भी अमल हो गया। मुब्तदा में असल है वो मारिफा होना चाहिए और खबर में असल क्या है? नकेरा होनी चाहिए। तो ये मां इसको मां मौसूफा बनाया जो नकेरा होता है, तो खबर की असल पर अमल हो गया। ये भी खबर है और खबर में भी असल क्या है? नकेरा होनी चाहिए, तो ये भी नकेरा है भाई। बस उलमा इस मकाम की और तकरीर करते हैं भाई, वो फरमाते हैं कि लफ्जुन तज़म्मना के जरिए दर असल शारह जामी के एतराज का जवाब देना चाहते हैं। एतराज ये कि अल कलामू है मुब्तदा और मा तज़म्मना ये मां क्या है? खबर। अगर ये मां मौसूला है तो मां मौसूला तो मारिफा होता है, और खबर और मुब्तदा जब दोनों मारिफा हो तो दरमियान में फसल का लाना वाजिब है। तो फिर साहिब काफिया फसल दरमियान में क्यों नहीं लाए? तो साहिब जामी ने जवाब दे दिया कि नहीं भाई, ये मां मौसूला नहीं है, ये मां कौन सा है? मां मौसूफा है, ये नकेरा है। तो जब ये नकेरा है तो अब फसल लाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बतलाया था कि ये तकरीर दुरुस्त नहीं है भाई, इसलिए क्योंकि मुब्तदा और खबर जब दोनों मारिफा हो तो फसल का लाना जायज है, वाजिब नहीं है। और मैंने मिसाल में दो हदीसें भी जिक्र कर दी। एक हदीस जो आप ज़ादुत तालिबीन में तमाम तलबा पढ़ते हैं, अद्दीनु नसीहतु, अद्दीनु है मुब्तदा, अन्नसीहतु है उसकी खबर, दोनों मारिफा हैं और दरमियान में कोई फसल नहीं है। हां जब ये खबर मारिफा हो तो फिर इस सूरत में ये हसर का फायदा देती है। किसका? हसर। और ये भी याद रखना, हमेशा हर जगह हसर का फायदा नहीं देगी, जहां हसर मकसूद हो वहां हसर का फायदा देगी, यानी अगर आप हसर का इरादा करते हैं तो हसर का फायदा देगी, तो उमूमन यह हसर का फायदा देती है। तो अद्दीनु अन्नसीहतु, दीन खैर ख्वाही ही है, यानी दीन यह है दीन इस्लाम के हर एक से खैर ख्वाही की जाए, किसी को भी तकलीफ नुकसान न पहुंचाया जाए, भाई हर एक से भलाई की जाए। और दूसरी हदीस मैंने हिदाया से जिक्र की कि हिदाया के अंदर किताबु सलात के अंदर जिक्र आता है मगरिब की नमाज के औकात बयान करते हुए कि अशफकुल हुमरतु, शफक सुर्खी ही है, अशफकु है मुब्तदा और अलहुमरतु है उसकी खबर, और दरमियान में कोई फसल नहीं, तो ये फसल लाना वाजिब नहीं है भाई। तो इस मां को आप चाहे मौसूला बनाओ तब भी इबारत सही, इस मां को मौसूफा बनाओ तब भी इबारत सही, लेकिन साहिब जामी ने बतला दिया कि इसको मौसूफा बनाओ तो ज्यादा बेहतर है ताकि खबर की असल पर अमल हो जाए। खबर में भी असल क्या है, वो क्या होनी चाहिए, नकिरा, तो उस पर अमल हो जाए। फिर आगे बतलाया था कलिमतैन हकीकतन और हुक्मन, बतला दिया कि वो दो कलीमे जो हैं वो आम हैं, चाहे हकीकतन हो चाहे हुक्मन हो। हुक्मन कलीमे होने का क्या माना, उसकी तफसील आज के सबक में इंशाल्लाह आ जाएगी भाई। और फिर आगे बतलाया था अयकून कुल्लु वाहिदति मिन हुमाफी जिमन ही, यानी उन दोनों में से हर एक उसके जिमन में हो। यह दरअसल के एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज मैंने आपको बतलाया था कि एतराज यह होता है कि ए साहिब काफिया, आपकी तारीफ जो कलाम की आपने की वो बातिल है, इसलिए क्योंकि आपकी तारीफ से मुतजम्मिन जो इसमें फाइल का सीगा है और मुतजम्मन जो इसमें मफूल का सीगा है, तो आपकी तारीफ से मुतजम्मिन और मुतजम्मन का इत्तेहाद लाजिम आता है, एक ही चीज मुतजम्मिन भी बनेगी और वही चीज मुतजम्मन भी बनेगी, और यह बातिल है। मुतजम्मिन और होता है मुतजम्मन और होता है, मुतजम्मिन वो है जिसके बीच में कोई चीज आए, और जो चीज बीच में आए वो है मुतजम्मन, यानी एक है कुल और एक है जुज। कुल वो है जिसके अंदर जुज आए, क्या आए, जिसके अंदर जुज आए, तो कुल जुज पर मुश्तमिल होता है और जुज उसका एक हिस्सा होता है। इसी तरह एक मुतजम्मिन है और एक है मुतजम्मन, तो मुतजम्मिन और मुतजम्मन और, मुतजम्मन दाखिल होता है मुतजम्मिन के अंदर भाई। तो कलाम की इन्होंने क्या तारीफ की, अल कलामु मा तजम्मना कलिमतैनी, तो कि कलाम वो है जो मुतजम्मिन हो, किसको, दो कलिमों को, तो कलाम हुआ मुतजम्मिन और वो दो कलिमे क्या हुए, मुतजम्मन। लेकिन यही दो कलिमे क्या हैं, यही तो कलाम भी हैं, और कलाम तो क्या होता है मुतजम्मिन, तो ये मुतजम्मिन भी हुए, यही दो कलिमे मुतजम्मन भी हैं और यही कलाम है तो मुतजम्मिन भी हैं, तो मुतजम्मन भी हुए और मुतजम्मिन भी हुए, एक ही चीज मुतजम्मिन और मुतजम्मन बन गई, हालांकि ये बातिल है, ये नहीं हो सकता। मुतजम्मिन और होता है मुतजम्मन और, कुल और होता है जुज और होता है, तो आपकी तारीख से कुल और जुज में इत्तेहाद लाजिम आया कि कलाम क्या है, दो कलिमे, ये गोया कुल, कुल है कलाम और दो कलिमे क्या हैं, जुज, लेकिन यही दो कलिमे क्या हैं, कलाम, तो ये कुल भी बन गए, ये जुज भी हैं और कुल भी हैं, और कुल और जुज का इत्तेहाद तो बातिल है। तो उसका जवाब मैंने आपको बतलाया था कि भाई दोनों में फर्क एतबारी है, ये दो कलिमे बाई एतबार कि इनकी इज्तिमाई हैसियत हो, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस सूरत में ये क्या है, कलाम, और यही दो कलिमे बाई हैसियत के एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो ये क्या हैं, ये मुतजम्मन हैं, ये क्या हैं, जैसे देखो मसलन ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन मजमूई हैसियत से, मजमूई सूरत के एतबार से ये क्या है, कलाम, कलाम है, और इनमें से हर एक कलिमा अलग अलग कलाम का जुज है, ज़ैदुन कलाम का अलग जुज और क़ाइमुन कलाम का अलग जुज है, तो इज्तिमाई हैसियत से, इज्तिमाई सूरत के एतबार से यह मुतजम्मिन है यानी कलाम है, और इनफिरादी हैसियत से यानी एक एक कलीमा अलग अलग यह क्या है, कलाम का जुज है यानी मुतजम्मन है। तो यह दोनों मुतजम्मिन हैं इज्तिमाई हैसियत से और यह दोनों मुतजम्मन हैं इनफिरादी हैसियत से, तो दोनों में अलग अलग एतबार हैं, तो लिहाजा मुतजम्मिन और मुतजम्मन का इत्तेहाद लाजिम नहीं आया। ये दोनों मुतजमिन हैं इज्तिमाई हैसियत से, इज्तिमाई सूरत के एतबार से, और ये दोनों मुतजमन हैं इनफिरादी हैसियत से, इनफिरादी सूरत के एतबार से अलग अलग, यानी तो मुतजमिन और मुतजमन का इत्तेहाद लाजिम नहीं आया। उसके बाद बिल इसनाद के बारे में इन्होंने आपको बतलाया था कि बिल इसनाद में यह बासबबिया है, बिल इसनादी ऐ बी सबबिल इसनादी, और नीज ये मफ़ूल मुतलक है बएतबार मौसूफ महजूफ के, ऐ तज़म्मुनन हासिलन बिल इसनादी। तो बिल इसनाद ये जार मजरूर ये सिफत है तज़म्मुनन की, और बराह रास्त सिफत नहीं बनेगा बल्कि हासिलन या साबितन वगैरह के साथ जोड़कर इसको सिफत बनाएंगे। तो क्या कहेंगे, ये बिल इसनाद मफूल मुतलक है बएतबार मौसूफ महजूफ के, जो तजमुनन महजूफ है। याद रखो ये जुमलों में कई कई तरकीबें होती हैं भाई। साहिब जामी ने बिल इसनाद को क्या बनाया, मफूल मुतलक बनाया बएतबार मौसूफ महजूफ के। आप चाहें तो बिल इसनाद को हाल बना दें, तजमना के अंदर जो हुआ जमीर है, हाल किसे कहते हैं जो फाइल या मफूल की हालत बयान करे, तो तजमना के अंदर हुआ जमीर है जो मां को राजे है, उससे इसको हाल बना दें। मा तजमना हुआ, हुआ जमीर जुलहाल, और हासिलन बिल इसनादी, इसको क्या कर दें, हाल बना दें। या तीसरी तरकीब यह भी कर सकते हैं कि कलिमतैन है नकेरा, तवज्जो है, कलिमतैन है नकेरा, और नकेरा के बाद बिल इसनाद जार मजरूर आया, और मैंने बताया था इस सूरत में नकेरा के लिए सिफत बनता है, तो आप इसको कलिमतैन के लिए सिफत भी बना सकते हैं, कलिमतैनी साबितैनी बिल इसनादी। कलिमतैन ये बिल इसनाद को क्या बनाए, कलिमतैन के लिए सिफत, और सिफत बराह रास्त बनेगी, मुतअल्लक भी निकालेंगे, मुतअल्लक भी निकालेंगे, और मुतअल्लक मौसूफ के मुताबिक निकालते हैं। कलिमतैन मुअन्नस है और मनसूब है, तो लिहाजा साबितानी, ये भी मुअन्नस निकाला, और फिर इसको हालत नस्बी में ले गए, साबितैनी, कलिमतैनी साबितैनी बिल इसनाद, दो ऐसे कलिमे जो इसनाद के साथ हों। बात समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने इसनाद के बारे में बतलाया था, इसनाद किसे कहते हैं कि एक कलिमे की निस्बत करना दूसरे कलिमे की तरफ इस तौर पर कि मुखातब को पूरा फायदा हासिल हो जाए, मुखातब को पूरा फायदा किसे कहते हैं, मैंने आपको बतलाया था कि मुखातब को पूरी बात समझ में आ जाए, कि आप उसको कोई बात बतलाना चाहते हैं, या आप उससे कोई सवाल पूछ रहे हैं, या आप उससे कोई काम तलब कर रहे हैं, ये उसको समझ में आ जाए, बात पूरी उसको समझ में आ जाए, इसको कहते हैं फायदा तामा, के पूरा फायदा हुआ। मसलन मैंने सुनने मुखातब से कहा जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है, देखा उसको बात पूरी समझ में आ गई कि ये मुझे क्या बतलाया जा रहा है कि जैद आलिम है। और अगर मैं उससे पूछता हूं अकामा जैदुन या अजराबा जैदुन, तो देखो बात पूरी है, वो समझ गया कि मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। या मैं उससे कहता हूं ए जरिब जैदन, अब वो समझ गया कि मुझसे जरब तलब की जा रही है। तो ये सब क्या है, फायदाए ताम है कि बात पूरी समझ में आ जाए भाई। उसके बाद इन्होंने तारीफ के जो फवाइदे कुयूद जिक्र किए थे कि तारीफ जो है जिन्स और फसल पर मुश्तमिल होती है, इस तारीफ में जिन्स क्या है और फसल क्या है, तो बतलाया भाई कि मां जो है ये मां से मुराद लफ्ज है, मा तजम्मना कलिमतैन बिल इसनादी, इस मां से क्या मुराद है, लफ्ज, और लफ्ज जब कहा तो इसमें दुनिया के तमाम लफ्ज आ गए, चाहे उनका कोई माना हो या माना ना हो, चाहे मुफरद हो चाहे मुरक्कब हो, फिर मुरक्कब चाहे वो कलाम हो या गैर कलाम, यानी मुरक्कब ताम हो चाहे मुरक्कब नाकिस हो भाई, तो ये सब इसके अंदर दाखिल हो गए। और फिर तजम्मना कलिमतैन की कैद जब आगे आई तो ये फसल है, इससे ये तजम्मना कलिमतैन, कितने कलिमों को मुतजमिन हो, दो को, तो वो एक कलिमा जो यानी मुफरदात इससे सारे निकल गए, और नीज मुहमल भी निकल गए, क्योंकि कलिमतैन कहा दो कलिमे हो, मालूम हो मुहमल नहीं होगा इसके अंदर, तो मुहमल भी निकल गए और मुफरदात भी निकल गए। और फिर उसके बाद जब बिल इसनाद की कैद आई तो बिल इसनाद के जरिए मुरक्कबात नाकिस निकल गए, यानी मुरक्कबात गैर कलामी निकल गए, मुजाह मुजाफिल गुलामुर रजुलिन, ये दो कलिमे तो हैं लेकिन इसनाद नहीं, तो इस्नाद की कैद लगाई तो ये निकल गए। इसी तरह रजुलन शुजाउन या रजुलन फाजिलुन मौसूफ सिफत, ये भी दो कलिमे तो हैं लेकिन चूंकि पूरा कलाम नहीं, इस्नाद ताम नहीं, तो ये भी निकल गए भाई। और बाकी मुरक्कबात कलामिया रह गए, चाहे वो खबरिया हो चाहे इंशाइया हो, जैसे इजरिब और ला तजरिब। अब आइए आज के सबक पर भाई। आज के सबक में भाई सारी तरकीब ही तरकीब की बातें हैं, और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कई दिन तरकीब करवाई। तरकीब आपको आती होगी तो जामी आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगी, और तरकीब नहीं आती तो जामी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो सारी बातें तरकीब ही की कर रहे हैं भाई। तो आज के सबक में बहुत ज्यादा तरकीब है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसान फरमाएंगे, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई आगे कहते हैं, वहैसु कानतिल कलिमतानी अअम्म मिन अन तकूना कलिमतैन हकीकतन औ हुक्मन दखल फि तारीफ मिस्लु ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन औ क़ाम अबूहु औ क़ाइमुन अबूहु فإن الأخبار فيها مع أنها مركبات لكنها في حكم الكلمة المفردة أعني قائم الأب। अच्छा भाई काफी निकालिए भाई, कुछ तरकीबें हल कर लें, फिर इंशाल्लाह ये मकाम आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा भाई। तरकीब कीजिए भाई, लिखिए भाई قام زيد, लिखिए भाई قام زيد। देखो तरकीब पे गौर करें, कामा फेल, जैदुन मरफू लफजन फाइल। मैंने बताया था हर फेल के लिए फाइल चाहिए, और वो फाइल जमीर भी हो सकती है और इसमें जाहिर भी हो सकता है, और लेकिन एक वक्त में एक ही फाइल आएगा, और फाइल हमेशा फेल के बाद आता है, कभी भी फेल पर मुकदम नहीं हो सकता, और फाइल एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। तो कामा फेल आया, फेल के लिए फाइल चाहिए, आगे जैदुन मरफू लफजन फाइल बनेगा। मरफू क्यों? क्योंकि फाइल है, और अगर आगे जैदुन न होता फिर भी कामा के लिए हमें फाइल तो जरूर चाहिए था, तो फिर हम इसी के अंदर जमीर निकालते। तो कामा फेल जैदुन मरफू लफजन इसका फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। काम जैदुन, जैद खड़ा हुआ या जैद खड़ा है। अब आपका एक साथी आप पर एतराज करता है कि भाई आपने तो कामा के अंदर हुआ जमीर उसको जिक्र ही नहीं किया, तो उसको आप क्या जवाब देंगे? हां कि फाइल एक ही आ सकता है, आगे जैदुन आ गया, लिहाजा अब कामा के अंदर कोई जमीर नहीं है। जी अगला जुमला लिखिए भाई, जैदुन कामा, जैदुन कामा। देखिए तरकीब भाई, जैदुन मरफू लफजान मुब्तदा, कामा फेल, और फेल के लिए हमेशा क्या चाहिए? फाइल। तो इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल, तो फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर यह खबर होगी जैद के लिए। लेकिन यह है जुमला, मैंने आपको बताया था जुमला और शिबे जुमला को जब भी किसी चीज से जोड़ना हो दरमियान में रबत जरूरी है, और रबत अमूमन किसके जरिए दिया जाता है? रबत की बहुत सी सूरतें हैं, लेकिन अमूमन जो है वो जमीर के जरिए रबत दिया जाता है। तो इस कामा के अंदर जो हुआ जमीर है वो किसको राजे? जैद को, इसके जरिए दोनों में रबत आ गया। तो जुमला फेलिया ये खबर हुई मुब्तदा के लिए, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। और ये कामा के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि इसका महल एराब क्या है, तो आप कहेंगे ये कामा पूरा जुमला फेलिया जो है ये खबर बन रहा है जैदुन के लिए। जैदुन है मुब्तदा और कामा हुआ, ये पूरा जुमला क्या है? खबर। और खबर क्या होती है? मरफू। तो ये जुमला मरफू है महलन। मैंने आपको बतलाया था कि जुमला जो है वो मबनी होता है, बल्कि बाज उलमा तो फरमाते हैं कि ये मबनीउल असल है। आपने पढ़ा है मबनीउल असल तीन चीजें हैं, फेले माजी, फेले अमर और तमाम हरूफ। तो देखो इसमें इसम कोई भी नहीं है, फेले माजी है, फेले अमर है और तमाम हरूफ हैं। हां इसम भी कभी मबनी होता है उसकी दरअसल इनके साथ मुशाबहत आ जाती है, और जब इसम की मुशाबहत मबनीउल असल के साथ आ जाए तो वो भी मबनी बन जाता है। और मबनियात जो हैं इसम में वो आठ हैं भाई, आप पढ़ चुके हैं भाई। तो ये कामा क्या है? जुमला। और जुमला भी क्या होता है? मबनी। तो ये कामा हम क्या कहेंगे? इसका इराब क्या? ज़ैदुन कामा। इस कामा का इराब क्या? ये मरफू महल्लन खबर है, खबर होने की बिना पर मरफू है। और महल्लन क्यों कहा? क्योंकि जुमला है, मबनी है भाई, मबनी है। अगली तरकीब कीजिए भाई। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन। जी तरकीब देखिए, ज़ैदुन मरफू लफ्जन मुबतदा, क़ाइमुन मरफू लफ्जन सीगा इसमें फाइल। मरफू क्यों? क्योंकि खबर है तो मरफू लफ्जन इसमें फाइल। मैंने आपको बतलाया था कि जैसे फेल के लिए हमेशा फाइल या नाई फाइल जरूर चाहिए, इसी तरह ये जो सिफत के सीगे हैं यानी इसमें फाइल, इसमें मफूल सिफत मुशब्बा और इसमें तफजील है और मुबालगे के सीगे हैं, इनके लिए भी हमेशा क्या चाहिए? फाइल या नाई फाइल जरूर चाहिए। तो कायमुन सीगा इसमें फाइल है, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, और वो हुआ जमीर किसको राजे? जैद को। ये रबत आ गया तो इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर ये खबर है किसके लिए? जैद के लिए। मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो ज़ैदुन कामा और ज़ैदुन क़ाइमुन इन दो तरकीबों पे नजर रखो। कामा को हमने जुमला कहा, कामा अपने फाइल से मिलकर जुमला होकर, जुमला फेलिया होकर ये खबर, और क़ाइमुन जो है उसके लिए भी फाइल चाहिए था लेकिन वो अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर क्या बना? खबर बना। बात समझ में आ रही है? तो ये शिबे जुमला होकर उसके लिए खबर बना। तो वजह क्या है भाई? तवज्जो है, वजह क्या है कि कामा को जुमला कहते हैं और क़ाइमुन को शिबे जुमला कहते हैं? तवज्जो है, याद रखो ये जो क़ाइमुन है इसके अंदर अगरचे जमीर होती है लेकिन इसको मुफरत शुमार किया जाता है, जुमला नहीं। और कामा को क्या शुमार करते हैं? जुमला शुमार करते हैं। तवज्जो है, जुमला शुमार करते हैं। तो इस क़ाइमुन को जुमला क्यों नहीं कहते? इसका भी इसनाद हुआ की तरफ हुआ या नहीं? इसके इसका भी तो इसनाद हुआ जमीर की तरफ हुआ, लेकिन इसको जुमला नहीं कहते, इसको शिबे जुमला कहते हैं। वजह इसकी ये कि क़ाइमुन की मुशाबहत जिस तरह फेल के साथ है, जैसे फेल के लिए फाइल चाहिए था इसी तरह क़ाइमुन के लिए भी क्या चाहिए? फाइल चाहिए। तो क़ाइमुन की मुशाबहत जैसे फेल के साथ है इसी तरह क़ाइमुन की मुशाबहत खाली आनी जमीर के साथ भी है, यानी वो इसम जो जिसमें जमीर नहीं होती उसके साथ भी इसकी मुशाबहत है, उसके साथ भी इसकी मुशाबहत है भाई। यानी जैसे रजुल, अब रजुल जो है ये तो सिफत का सीगा नहीं है, ये तो आम इसम है तो इसके अंदर कोई जमीर नहीं, तो क़ाइमुन की जैसे मुशाबहत थी कामा के साथ कि कामा के लिए जैसे फाइल चाहिए था क़ाइमुन के लिए भी क्या चाहिए? फाइल। इसी तरह क़ाइमुन की मुशाबहत रजुल के साथ भी है। किस तरह मुशाबहत है? देखो आगे जुमले लिखो भाई। ज़ैदुन रजुलुन, ज़ैदुन रजुलुन लिख लिया। अगला जुमला इसी के साथ लिखें, हुआ रजुलुन, हुआ रजुलुन। जी इसी के साथ अगला जुमला लिखें, आना रजुलुन, आना रजुलुन। अगला जुमला लिखिए, अंता रजुलुन, अंता रजुलुन। देखो देखो रजुल में कोई तब्दीली नहीं आ रही, चाहे आप इसको जैद से जोड़ें, चाहे आप इसको हुआ से जोड़ें, चाहे आप इसको अना से जोड़ें, चाहे अंता से जोड़ें, चाहे मुतकल्लिम की जमीर से जोड़ें, चाहे मुखातब की जमीर से जोड़ें, चाहे चाहे आप इसमें जाहिर के साथ इसको जोड़ें, चाहे गायब की जमीर के साथ जोड़ें, तमाम सूरतों में यह रजुल का लफ्ज उसी तरह रहता है। तरकीब क्या होगी? ज़ैदुन रजुलुन, ज़ैदुन मरफू लफ्जान मुब्तदा, रजुलुन मरफू लफ्जान खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ज़ैदुन रजुलुन, जैद आदमी है, जैद मर्द है। हुआ रजुलुन, हुआ मरफू महल्लन मुब्तदा, मरफू क्यों? मुब्तदा है। महल्लन क्यों? मबनिया जमीर है और रजुलन मरफू लफजन खबर। मरफू क्यों? क्योंकि खबर है, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, हुआ रजुलन, तर्जमा वो आदमी है। देखो हुआ के साथ रजुल को जोड़ा तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब अना के साथ जोड़ा, अना रजुलन, अना जमीर मरफू महल्लन मुब्तदा, मरफू क्यों? मुब्तदा है, मुब्तदा मरफू होता है। महल्लन क्यों? मबनी है। और रजुलन मरफू लफजन खबर, तो मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अना रजुलन, मैं आदमी हूं, मैं मर्द हूं। अंता रजुलन, अंता मरफू महल्लन मुब्तदा, मरफू क्यों? मुब्तदा है, मुब्तदा मरफू होता है। महल्लन क्यों? क्योंकि जमीर है, मबनी है। और रजुलन मरफू लफजन खबर, मरफू क्यों? क्योंकि खबर है, खबर मरफू होती है। तो मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अंता रजुलन, तू आदमी है, आप आदमी हैं, मर्द हैं। देखो रजुल को हमने जैद से जोड़ा तब भी उसी तरह, रजुल को हमने हुआ, अना और अंता हर एक से जोड़ा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई क्योंकि इसके अंदर कोई जमीर नहीं। तो जैसे इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, ये रजुल क्या है? खाली यानी जमीर, इसके अंदर कोई जमीर नहीं। तो जैसे वो इसम जो जमीर से खाली होता है, चाहे आप उसको इसमें जाहिर से जोड़ें, चाहे जमीर से जोड़ें, चाहे मुतकलिम की जमीर से, चाहे मुखातब की जमीर से, चाहे गायब की जमीर से, जैसे उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, इसी तरह काइमुन में भी कोई तब्दीली नहीं आती। आगे लिखिए, जैदुन काइमुन, जैदुन काइमुन, अगला जुमला हुआ काइमुन, हुआ काइमुन, उससे अगला जुमला लिखिए अना काइमुन, अना काइमुन, और अगला जुमला लिखिए अंता काइमुन, अंता काइमुन। तो देखो जैसे रजुल खाली यानी जमीर में, खाली यानी जमीर जो था, चाहे उसको जैद से जोड़ें, चाहे हुआ से, चाहे अना से, चाहे अंता से, उस रजुल में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। इसी तरह कायम को आप जैद से जोड़ें, हुआ से जोड़ें, अना से जोड़ें या अंता से जोड़ें, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं। जैदुन कायमुन, हुआ कायमुन, अना कायमुन, अंता कायमुन, देखा कायमुन उसी तरह है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो जैसे कायमुन की मुशाबहत थी फेल के साथ, किस तरह मुशाबहत थी? जैसे फेल के लिए फाइल चाहिए था, कायमुन के लिए भी क्या चाहिए? फाइल चाहिए। इसी तरह कायमुन की मुशाबहत खाली यानी जमीर यानी रजुल जैसे इसम के साथ भी है, कि जैसे वो नहीं बदलता, चाहे उसको इसमें जाहिर से जोड़ें, चाहे गायब की जमीर से जोड़ें, चाहे मुतकल्लिम की जमीर से जोड़ें, चाहे मुखातब की जमीर से जोड़ें, तो कायम की मुशाबहत दोनों के साथ आ गई, फेल के साथ भी आ गई और खाली यानी जमीर के साथ भी मुशाबहत आ गई। इसलिए इसको जुमला नहीं कहते क्योंकि इसकी मुशाबहत है खाली यानी जमीर के साथ। तो इसको फिर शिबे जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? शिबे जुमला कहते हैं। जुमले के मुशाबे तो है लेकिन जुमला नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक और तरकीब की गहरी बात जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं लेकिन फिर दोबारा समझ लें भाई, ये मकाम फिर ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ये तरकीब की बातें अच्छी तरह समझ लें जी। आप देखो, याद रखो, ये जो सिफत के सीगे हैं, आप इसको जिस तरह की जमीर से जोड़ेंगे इसके अंदर भी वही जमीर निकालना पड़ेगी, इसके अंदर भी वही जमीर निकालना पड़ेगी। यानी अगर आप इसे गायब की जमीर से जोड़ें तो इसके अंदर गायब की जमीर निकालेंगे, अगर आप इसे मुतकल्लिम की जमीर से जोड़ें तो इसके अंदर मुतकल्लिम की जमीर निकालेंगे, और अगर आप इसको मुखातब की जमीर से जोड़ें तो इसके अंदर मुखातब की जमीर निकालेंगे। और इसमें जाहिर, अगर आप इसके इसमें जाहिर यानी जैद अमर बकर वगैरह से जोड़ते हैं तो याद रखो इसमें जाहिर गायब के दर्जे में होता है। किसके दर्जे में? याद रखो कलाम के तीन तरीके हैं। एक है तकल्लुम, मुतकल्लिम अपने बारे में बात करता है कि मेरा नाम यह है, मैं आज बाजार गया था, मैंने आज सबक पढ़ा, देखो अपनी बात कर रहा है। एक है खिताब, जिसमें मुखातब की बात की जाती है, आपका क्या नाम है, आप क्या पढ़ते हैं, आप कहां रहते हैं, देखो मुखातब की बात हो रही है। और एक है गायब, किसी तीसरे शख्स के बारे में बात करना कि जैद अच्छा आदमी है, वो मेहनती है, वो दर्जा राबिया में पढ़ता है फलां, ये देखा गायब के बारे में। तो कलाम के तीन तरीके होते हैं, तकल्लुम खिताब और गैबत, तकल्लुम खिताब और गैबत। और ये जो इसमें जाहिर होता है, याद रखो ये गायब के दर्जे में होता है, क्योंकि नाम जो है, मुतकल्लिम अपना नाम नहीं लेता कभी बात करते हुए। मैंने अपने बारे में आपको बताना हो कि मैं आज बाजार गया था, तो मैं अपना नाम नहीं लूंगा, मसलन मेरा नाम जैद है, मैं आपसे कहूं जी जैद आज बाजार गया था, बल्कि मैं कहूंगा मैं आज बाजार गया था, तो मुतकल्लिम अपना नाम नहीं लेता बल्कि जमीर से अपने आप को जिक्र करता है। मुखातब का भी वो नाम नहीं लेता, मसलन मुखातब का नाम जैद है, तो उसको ये नहीं कहेगा जैद किधर रहता है, जैद क्या पढ़ता है, बल्कि कहेगा आप क्या पढ़ते हैं, आप कहां रहते हैं। देखो मुखातब के लिए भी जमीर इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम नहीं लिया जाता। हां गायब का नाम लिया जाता है, और एक दफा नाम लिया जाता है और उसके बाद फिर उसके लिए भी गायब की जमीरें इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन मैं कहता हूं जैद मेरा दोस्त है, वो अच्छा लड़का है, वो दर्जा राबिया में पढ़ता है, वो मेहनती तालिब इलम है। देखो एक दफा नाम लिया और फिर उसके बाद उसके लिए भी जमीरें इस्तेमाल की। तो ये जो इसमें जाहिर होता है ये किसके दर्जे में होता है, गायब के दर्जे में होता है, गायब का नाम लिया जाता है। मुतकल्लिम और मुखातब दोनों आमने सामने, ये नाम के साथ इनको ताबीर नहीं किया जाता। भाई अब देखो मैंने आपको जाब्ता क्या बतलाया कि सिफत के सीगे को जिस जमीर के साथ जोड़ेंगे उसके अंदर भी वही जमीर निकालेंगे। अब ये जो मैंने जुमले लिखवाए जरा इनकी तरकीब भी सुनो। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन मरफू लफ्जान मुब्तदा, क़ाइमुन मरफू लफ्जान सीगा इसमें फ़ाइल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फ़ाइल। देखो जैद इसमें जाहिर है ना, मैंने बताया था एक है जमीर और एक है इसमें जाहिर। तमाम दुनिया के इसम इकट्ठे कर लें, उनमें से जमीरों को निकाल दें, बाकी तमाम इसम इसमें जाहिर कहलाते हैं। तो जैद जमीर है नहीं, जब जमीर नहीं इसम तो है, तो फिर ये इसमें जाहिर है। तो जैद इसमें जाहिर आया और इसमें जाहिर किसके दर्जे में है, गायब के दर्जे में, इसलिए कायमुन के अंदर कौन सी जमीर निकाली, हुआ जमीर गायब की निकाली। भाई तो जैदुन मरफू लफजन मुब्तदा, कायमुन मरफू लफजन सीगा इसमें फाइल, इसमें फाइल इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, जो किसको राजे है, जैद को। रबत, ये शिबे जुमला को भी किसी चीज से जोड़ना हो तो रबत जरूरी, तो इसमें फाइल कायमुन जो है, इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर ये खबर हुई किसकी, जैद की, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। आगे हुआ कायमुन, अब हुआ से हमने कायम को जोड़ना है तो कायम के अंदर भी हुआ जमीर निकालेंगे, हुआ मरफू महल्लान मुब्तदा, कायमुन मरफू लफजान सिगा इसमें फाइल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, जो मुब्तदा को राजे है, ये रबत आ गया। इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अना काइमुन, इसकी तरकीब कैसे होगी, अना मरफू महल्लन मुब्तदा, काइमुन मरफू लफ्जान सिगा इसमें फाइल, इसके अंदर आना जमीर, आना से जोड़ रहे हैं तो इसके अंदर आना जमीर, इसके अंदर आना जमीर मरफू महल्लन फाइल, इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। तो कायमुन में कौन सी जमीर निकाली, आना, तो रबत आ गया। यह रबत की दूसरी किस्म है, पहली सूरत क्या थी, गायब की जमीर हो। याद रखो मैंने आपको बतलाया था मर्जा सिर्फ गायब की जमीर का होता है, मुतकल्लिम और मुखातब की जमीर का मर्जा नहीं होता। मुतकल्लिम और मुखातब आमने सामने होते हैं, मुतकल्लिम होता है बात करने वाला और मुखातब जो बात सुन रहा है, तो इसमें फिर जमीर का मर्जा नहीं कहते। तो यहां पर भी आना, तो आना कायमुन, तो अब आप यह ना कहें कि कायमुन के अंदर आना जमीर है और वो लौट रही है आना मुब्तदा को, नहीं नहीं, मर्जा सिर्फ किसका होता है, गायब का। तो फिर ये रबत कैसे आया, भाई रबत की ये दूसरी किस्म है कि जिस इसम से आप जोड़ रहे हैं वो खुद ही उस जुमले या शिबे जुमला में के अंदर आ जाए। तो आप कायमुन को किससे जोड़ रहे हैं, आना से, और कायमुन के अंदर ही क्या आ गया, आना आ गया, तो रबत आ गया। भाई जैसे मैं उसकी मिसाल जिक्र करता हूं, अलहाका तुम अलहाका, अलहाका मुब्तदा है और मलहाका पूरा जुमला उसकी खबर, और जुमले को किसी भी चीज से जोड़ना हो तो क्या चाहिए, रबत। तो यहां क्या रबत है कि वही अलहाका जिसके साथ आप मलहाका को जोड़ना चाहते हैं उसके अंदर भी क्या आ गया, अलहाका, तो रबत आ गया। भाई फिर सुने, अना कायमुन, अना मरफू महल्लान मुब्तदा, कायमुन मरफू महल्लान सिगा इसमें फाइल, इसके अंदर अना जमीर मरफू महल्लान इसका फाइल, कायमुन सिगा इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर यह खबर मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, अना कायमुन मैं खड़ा हूं, और अंता कायमुन, अब देखो कायमुन को हम किससे जोड़ रहे हैं, अंता से, तो कायमुन के अंदर जमीर भी कौन सी निकालेंगे, अंता ही निकालेंगे, अंता कायमुन तरकीब सुनो, अंता मरफू महल्लान मुब्तदा, कायमुन मरफू लफ्जन सिगा इसमें फाइल, इसके अंदर अंता जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो तफसील में यह बयान कर रहा था कि ये जो कायमुन है इसके लिए भी फाइल आता है और कामा के लिए भी फाइल आता है, लेकिन कामा को अपने फाइल से जोड़ने के बाद उसको जुमला फेलिया कहते हैं, लेकिन कायमुन को अपने फाइल से जोड़ने के बाद जुमला नहीं कहते बल्कि शिबे जुमला कहते हैं। वजह इसकी यह है कि जैसे इसकी मुशाबहत कामा के साथ है, इसी तरह इसकी मुशाबहत खाली आनी जमीर इसम के साथ भी है, जैसे वो बदलता नहीं इसी तरह यह भी गायब मुतकल्लिम और मुखातब के लिए बदलता नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां एक बात याद रखना, देखो जैदुन कायमुन, हमने क्या तरकीब की, जैदुन कायमुन, जैदुन को बनाया मुब्तदा, कायमुन मरफू लफ्जन, इसके अंदर हुआ जमीर है, इसके अंदर हुआ जमीर है, इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो याद रखो ये जो कायमुन है, जब ये यानी ये जो सिफत के सीगे हैं, जब ये जमीर को रफा दे रहे हों जो इन्हीं के अंदर छुपी होती है, तो उस वक्त फिर इसको मुफरद ही समझा जाता है। क्या समझा जाता है, अभी बताया ये जुमला नहीं कहलाते बल्कि क्या कहलाते हैं, शिबे जुमला, शिबे जुमला कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, तो हम यूं कहेंगे जैदुन कायमुन, ये कलाम सिर्फ दो कलिमों से बना है, तवज्जो है, कलाम किसको कहते हैं, मातज़म्मना कलिमतैन बिल इस्नादी, तो जैदुन कायमुन भी कितने कलिमों से बना है, दो कलिमों से, एक है जैदुन और दूसरा है कायमुन। आप कहेंगे कि ये तो तीन कलिमे हैं, कायमुन के अंदर हुआ भी तो है, तवज्जो है, कायमुन के अंदर हुआ भी तो है, आप कहेंगे तीन कलिमे, लेकिन नहीं, याद रखो जब सिफत का सीगा अपने अंदर छुपी हुई जमीर को रफा दे रहा हो तो फिर इसको एक ही कलिमा शुमार किया जाता है, गोया उसको शुमार ही नहीं किया जाता उस जमीर को,
शुमार ही नहीं किया जाता,
क्योंकि जमीर जो है जिसमें यह अमल कर रहा है, जिसको रफा दे रहा है, कोई इस्नाद ताम है, इस्नाद ताम है, बात पूरी नहीं, इस्नाद ताम नहीं, और नीस क्या वो जमीर जाहिर है या छुपी हुई है, छुपी हुई है, तो इस्नाद भी ताम नहीं है, यानी बात पूरी नहीं है, मुफरद है, जुमला नहीं है, तो इस्नाद भी ताम नहीं और जमीर भी इसके अंदर छुपी हुई है, तो इसका ये अमल गोया ला अमल जैसा है, ये अमल ला अमल जैसा है, गोया इसने कोई अमल किया ही नहीं है, तो गोया सिर्फ कायमुन ही है, इसके अंदर कुछ जमीर वगैरह है ही नहीं। तवज्जो है, फिर सुनो भाई, आगे इश्काल आने वाला है, अभी से बात समझ लो, जैदुन कायमुन ये कलाम है और कितने कलिमों से मुरक्कब है, दो कलिमों से, आप कहेंगे नहीं तीन कलिमे हैं, जैदुन भी है कायमुन भी है और कायमुन के अंदर हुआ जमीर भी है, तो मैंने बताया नहीं, उस हुआ को शुमार नहीं करते नहवी हजरात, उसको शुमार यानी का कायमुन के अंदर जमीर होती है फिर भी इसको मुफरद कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको मुफरद कहते हैं। भाई क्यों मुफरद क्यों कहते हैं, इसको तो मुरक्कब कहना चाहिए, हुआ जमीर है, कहते हैं भाई देखो इसके अंदर जो इस्नाद है वो इस्नाद ताम नहीं, इस्नाद ताम हो तो बात पूरी हो जाती है, जैसे कामा के अंदर इस्नाद ताम है, हुआ जमीर के साथ मिलकर वो जुमला बन जाता है, लेकिन कायमुन हुआ जमीर के साथ मिलकर पूरा जुमला नहीं बनता, तो ये इस्नाद ताम नहीं, यानी इसमें बात पूरी नहीं, और नीज इसके अंदर छुपी हुई जमीर है ये उसको रफा दे रहा है, तो वो अमल भी किसकी तरह है, ला अमल की तरह है, गोया इसने कोई अमल किया ही नहीं भाई, तो लिहाजा इसको वो मुफरद ही शुमार करते हैं, इसको मुरक्कब शुमार नहीं करते। हां अगर ये आगे इसमें जाहिर को रफा दे रहा हो, क्या दे रहा हो, जैसे कामा जैदुन है, कामा फेल है और जैदुन इसमें जाहिर उसका फाइल, इसी तरह सिफत के सीगों के लिए भी फाइल या नाई फाइल कभी इसमें जाहिर आ जाता है, तो इस सूरत में फिर वो इसको मुरक्कब शुमार करेंगे, क्या करते हैं मुरक्कब, लेकिन जब यह अपने अंदर छुपी हुई जमीर को रफा दे रहा हो तो फिर इसको मुफरद ही शुमार किया जाता है, उस जमीर को भी गोया ला जमीर की तरह समझा जाता है, या यूं कहें इसके अमल को भी ला अमल की तरह समझा जाता है, या यूं कहो इसके इसनाद को भी ला इसनाद की तरह समझा जाता है। बात समझ में आ गई। अब कुछ और जुमले कीजिए भाई तरकीब की, जी लिखिए भाई, जैदुन कामा अबूहू, बस अब हम करीब पहुंच गए इंशाल्लाह, अब यह मकाम हल हो जाएगा। जैदुन कामा अबूहू, जी तरकीब कीजिए, जैदुन मरफू लफजान मुबतदा, मरफू क्यों, मुबतदा है और मुबतदा मरफू होता है, लफजन क्यों, क्योंकि इसके रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं, जैदुन कामा अबूहू, कामा फेल, अबू मरफू लफजान मुजाफ, अबूहू में अबू मरफू लफजान मुजाफ, मरफू क्यों, क्योंकि यह फाइल है कामा के लिए, और लफजन क्यों, क्योंकि इसके रफा, इसका ये अबूहू जब ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है और अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुआहदा जब मुजाफ हो अलावा या मुतकल्लिम की तरफ, तो इनका इराब रफा वो के साथ, नसब अलिफ के साथ और जर या के साथ, अबूहू अबाहू अबीही, तो ये अलिफ वो और या के साथ एराब आता है, और अबूहू ये किसके साथ है, वो के साथ, और उस वो पर हम बाकायदा तलफुज कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो ये अबूहू तो मरफू लफजान मुजाफ, मरफू क्यों, क्योंकि फाइल है, लफजन क्यों, क्योंकि इसके रफा यानी वो जो है उस पर हम तलफुज कर रहे हैं, और मुजाफ आपको कैसे पता चला ये मुजाफ है, हां क्योंकि जाब्ता आपने पढ़ा था तरकीब में कि किसी भी इसम के साथ जमीर मुत्तसिल जुड़ी हो तो आपस में मुजाफ मुजाफिले बनते हैं, तो अबू मुजाफ है और हा जमीर मजरूर महल्लान मुजाफिले, मजरूर क्यों, मुजाफिले है और मुजाफिले मजरूर होता है, और महल्लान क्यों, क्योंकि जमीर है मबनी है और मबनी पर एराब महल्लन होता है, तो मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर यह फाइल हुआ कामा के लिए। आपका एक साथी आप पर इश्काल करता है, कहते हैं अबूहू आपने हा जमीर को मजरूर, आपने मजरूर महल्लन कहा, हालांकि यह तो मरफू है, हम इस पर रफा पढ़ रहे हैं, अबूहू देखो हा पर मैं रफा पढ़ रहा हूं, तो क्या जवाब देंगे कि ये इसकी हरकत है एराब नहीं है भाई, क्योंकि ये तो मबनी है, मबनी पर तो एराब जाहिर ही नहीं हो सकता, और नीस मैंने आपको ये भी बतलाया था अबूहू, ये अबूहू के आखिर में जो जमीर है ये कौन सी जमीर है, हा जमीर है, उमूमन तोलबा इसको पढ़ते हैं हु जमीर, क्या पढ़ते हैं हु, नहीं भाई ये जमीर है, और क्योंकि ये कलीमा है भाई, और कलीमा किसे कहते हैं, बामाना लफ्ज, जमीर का भी कोई माना होता है कि नहीं होता, जमीर भी कलीमा है, तो जब भी कोई कलीमा एक हर्फ पर मुश्तमिल हो और उसका आप नाम लेना चाहते हैं तो वो नाम लेंगे उसका जो हुरूफ तहजी में है, और अबूहू के आखिर में जो हर्फ है हुरूफ तहजी में इसको क्या कहते हैं, हा कहते हैं, तो यह हा है, जैसे बिस्मिल्ला आपसे कोई कहे बिस्मिल्ला की तरकीब करें तो आप क्या कहते हैं, बा जारा, भाई बी जारा क्यों नहीं कहते, इसलिए क्योंकि ये बा हर्फ जर है, ये कलीमा है, इसका कोई माना है और एक हर्फ पर मुश्तमिल है, और एक हर्फ पर जब कोई कलीमा मुश्तमिल हो तो उसका वो नाम लेते हैं जो हुरूफ तहजी में होता है, और बिस्मिल्लाह के शुरू में ये कौन सा हर्फ है, इसको हुरूफ तहजी में क्या कहते हैं, बा कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं बा जारा। बात समझ में आ गई। जैदुन कामा अबूहू, जरा इस तरकीब पे नजर रखो, अच्छी तरह ये सारी बातें समझ लें, देखो इसमें जैदुन है मुबतदा, कामा फेल, और अबूहू ये मुजाफ मुजाफिले मिलकर कामा के लिए क्या बन गए, फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर جملہ فعلیہ ہو کر زید ان کے لیے خبر، لیکن جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری؟ ربط ضروری. تو یہاں ہم نے ربط نہیں دیا بھائی، اس کے بغیر یہ خبر نہیں بن سکتا. کس سے ربط دیں گے؟ کیا ربط کیا ہے؟ یہ جو ابوہ کے آخر میں ہا ضمیر ہے، یہ کس کو راجع ہے؟ زید کو، زید کو. تو یہ ربط آ گیا. تو قام فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی، کس کے لیے؟ زید کے لیے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. زیدن قام ابوہ، دیکھو ترجمہ، زید کے کھڑا ہے ابوہ اس کا باپ، زید کے کھڑا ہوا اس کا باپ، یعنی زید کا باپ کھڑا ہوا. توجہ ہے؟ تو یہاں پر دیکھو دو اسناد ہیں، دو اسناد ہیں. ایک اسناد ہے کس کے درمیان؟ قاما اور ابوہ میں. توجہ ہے؟ قاما اور ابوہ کے درمیان اسناد ہے. قاما فعل ہے اور ابوہ اس کا فاعل. پھر یہ پورا جملہ فعلیہ ہوا اور اس سارے کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ زید کی طرف ہوا. یہ دوسرا اسناد ہے. توجہ ہے جی. اگلا جملہ لکھئے بھائی، بلکہ یوں کریں، زیدن کے گرد ایک دائرہ بنائیے، چھوٹا سا زیدن کے گرد دائرہ بنا لیں، دائرے میں لے آئیں ابو زید کو، لفظ زید کے گرد دائرہ بنا دیں، اور قام ابوہ اس سارے کے گرد ایک ہی دائرہ بنا دیں، تو یہ دو دائرے بن گئے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو پہلے دائرہ یہ ہے مبتدا، دوسرا دائرہ یہ ساری خبر ہے. توجہ ہے؟ یہ ساری خبر ہے اور اس کا اسناد ہو رہا ہے مبتدا کی طرف، لیکن اس خبر کے اندر ایک اور اسناد بھی ہے. قاما فعل ہے اور ابوہ اس کا فاعل ہے. توجہ ہے جی. اگلی ترکیب کیجئے بھائی. زیدن ابوہ قائمن، زیدن ابوہ قائمن. دیکھو ترکیب سنو بھائی. زیدن مرفوع لفظان مبتدا، یوں کہ مبتدا اول، زیدن مرفوع لفظاً مبتدا اول، اور آگے ابوہ قائمن، یہ پھر پورا جملہ اسمیہ ہے، یہ سارا خبر بنے گا زیدن کے لیے، اور اس جملہ اسمیہ میں پھر مبتدا اور خبر آئیں گے بھائی. زیدن مبتدا اول ہے، آگے ابوہ، ابو مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ثانی ہے، یہ بھی مبتدا ہے. اور لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، یعنی واؤ پر بھائی، اس کے اندر جو واؤ ہے. اور مضاف، آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ کیونکہ کسی اسم کے ساتھ بھی جب ضمیر ہے متصل آ جائے تو واپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضافل ہے. تو ابو مرفوع لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضافل ہے، اور یہ ہا ضمیر راجع ہے زید کو. یہ ابوہ قائمن پورا جملہ خبر بنے گا زید کی، تو درمیان میں ربط چاہیے، تو ربط کیا ہے؟ یہ ہا ضمیر ہے، یہ زید کو راجع ہے. تو ابوہ مضاف اور مضافلے مل کر مبتدا، اور قائمن یہ خبر ہے کس کی؟ یہ ابوہ کی خبر بنے گی. توجہ ہے؟ تو قائمن مرفوع لفظان صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ زید کو نہیں راجع، کیونکہ قائمن زید کی خبر نہیں ہے، بلکہ کس کی خبر ہے؟ ابوہ کی. اور یہ شبہ جملہ بنے گا، اور شبہ جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری؟ ربط. تو قائمن کو کس سے جوڑنا چاہتے ہیں؟ ابوہ سے. تو اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ ابوہ کو راجع ہے. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر یعنی ابوہ، یہ مبتدا، اور قائمون خبر، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید کے لیے. اور ربط ہم نے بتا دیا تھا، ابوہ کی ہا ضمیر زید کو راجے تھی. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، زیدن ابوہ قائمون. ترجمہ کیا؟ زید کے ابوہ قائمون، کہ اس کا باپ کھڑا ہے، زید کے اس کے ابو کھڑے ہیں، زید کے اس کے ابو کھڑے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ یعنی زید کے ابو کھڑے ہیں، مختصر لفظوں میں یوں کہو. اب بھائی پھر اس کے گرد دائرہ بنائیں، زیدن یہ ہے مبتدا، اس کے گرد دائرہ بنا دیں، یہ ہے مبتدا، اور ابوہ قائمون, یہ پورا جملہ یہ خبر ہے, تو اس پورے کے گرد ایک ہی دائرہ بنا دیں, توجہ ہے؟ تو یہاں خبر کیا ہے؟ پورا جملہ دیکھو, اوپر والے جملے میں کیا تھا؟ زیدن قام ابوہ, وہاں جو خبر تھی وہ بھی جملہ تھی, یہاں جو ہے زیدن ابوہ قائمون, یہاں بھی خبر کیا ہے؟ جملہ, لیکن اوپر خبر تھی جملہ فعلیہ اوپر والے جملے میں, اور اس جملے میں جملہ اسمیہ پوری خبر بن رہی ہے, ابوہ قائمون یہ جملہ اسمیہ ہے, توجہ ہے؟ تو گویا زید ہے مبتدا اور ابوہ قائمون یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے, اور اس خبر کے اندر ایک اور اسناد ہے, کیونکہ اس میں بھی مبتدا اور خبر ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا جملہ لکھئے بھائی, زیدن قائم ابوہ, زیدن قائم ابوہ, جی ترکیب سنیں, زیدن مرفوع لفظان مبتدا, قائم مرفوع لفظان صیغہ اسم فاعل, مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر بنے گی زید کے لیے, اور لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کریں قائم, اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ صفت کا صیغہ آیا, اس کے لیے بھی ہمیشہ فاعل چاہیے, تو آگے ابوہ, یہ ابو مرفوع لفظان مضاف, یہ کیوں مرفوع؟ یہ فاعل ہے قائم کے لیے, جیسے قامہ فعل کے لیے فاعل چاہیے, اسی طرح قائم اس میں فاعل کے لیے بھی فاعل چاہیے, تو ابوہ مرفوع لفظان مضاف, مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. لفظان کیوں؟ کیونکہ اس کا رفع یعنی واو پر ہم تلفظ کر رہے ہیں, مرفوع لفظان مضاف. آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ کیونکہ کسی اسم کے ساتھ بھی جب ضمیر جڑ جائے آ کر تو وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضافل ہے. تو ابو مرفوع لفظان مضاف, ہا ضمیر مجرور محلن مضافل ہے, مضاف اپنے مضافلے سے مل کر فاعل ہوا قائمون کے لیے, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بنے گا زید کے لیے, لیکن جملہ یا شبہ جملہ کو جوڑنا ہو کسی چیز سے تو ہمیشہ کیا ضروری؟ ربط ضروری. تو آپ نے ربط نہیں دیا, ربط کیا ہے؟ ابوہ کی جو ہا ضمیر ہے یہ زید کو راجے ہے بھائی, ابوہ اے ابو زیدن, تو یہ ہا ضمیر کس کو راجے؟ زید کو راجے, یہ ربط آ گیا. تو اس میں فاعل قائمون جو ہے وہ اپنے فاعل یعنی ابوہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر زید کے لیے, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آپ کا کوئی ساتھی آپ پر اشکال کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ قائمون ابوہ, آپ نے قائمون کے اندر ضمیر نہیں نکالی, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں کہ فاعل ایک ہی آتا ہے, فعل یا صفت کے صیغے کے لیے ایک ہی فاعل آ سکتا ہے, وہ ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر, لیکن آئے گا ایک ہی, اگر ضمیر فاعل ہو تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا, اور اگر اس میں ظاہر ہو تو ضمیر نہیں آ سکتی, اور یہاں قائمون کے لیے ابوہ اس میں ظاہر فاعل آ رہا ہے, تو لہذا اب اس قائمون کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے, ورنہ تو دو فائل بن جائیں گے. ہاں فرق یہ ہے کہ قائمون ابوہ یہ شبہ جملہ ہے, جملہ نہیں ہے. قام ابوہ آیا تھا پہلے جملے میں, زیدن قام ابوہ, وہ قام ابوہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر تھی, اور لیکن یہ قائمون ابوہ یہ شبہ جملہ ہو کر زیدن کے لیے خبر بنے گی. اب اس میں بھی زیدن کے گرد دائرہ لگائیے, زیدن کے گرد دائرہ لگائیے, یہ ہے مبتدا, اور قائمون ابوہ یہ پوری خبر ہے, اس کے گرد بھی دائرہ لگا لیجئے قائمون ابوہ. دیکھو یہ دو دائرے بن گئے, زیدن ہے مبتدا اور قائمون ابوہ ہے اس کی خبر. یہ تین جملوں پر ذرا نظر رکھنا, پہلا جملہ کیا تھا؟ زیدن قام ابوہ. دوسرا کیا تھا؟ زیدن ابوہ قائمون. اور تیسرا کیا تھا؟ زیدن قائمون ابوہ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو یہ کلام ہے, یہ کیا ہے؟ کلام ہے, لیکن اس کے اندر دو کلمے نہیں ہیں, دو سے زیادہ کلمے ہیں, توجہ ہے؟ دو سے زیادہ کلمے ہیں. اور نیز ان سب میں آپ دیکھیں, پہلا جملہ زیدن قام ابوہ, خبر کیا ہے؟ قا قام ابوه, توجہ ہے تین جملوں میں سے پہلے پر نظر رکھیں, زید قام ابوه, مبتدا کیا زید اور خبر کیا قام ابوه, پورا جملہ فعلیہ خبر بن رہی ہے اور اس خبر کے اندر بھی ایک اسناد ہے. دوسرے جملے پہ نظر رکھیں, زید ابوه قائم, زید ہے مبتدا اور ابوه قائم, پورا جملہ اسمیہ یہ خبر بن رہی ہے, تو یہ خبر ہے اور اس کے اندر بھی اسناد. لیکن یہ جو پہلی دو مثالیں ہیں ان میں خبر جملہ ہے, اور یہ جو تیسری مثال ہے زید قائم ابوه, اس میں زید ہے مبتدا اور قائم ابوه پورا یہ سارا خبر ہے اور یہ شبہ جملہ ہے. اس کے اندر بھی اسناد ہے لیکن اسناد تام نہیں ہے, تام نہیں, یہ جملہ نہیں ہے بلکہ شبہ جملہ ہے, اور پھر یہ شبہ جملہ خبر بن رہا ہے زید کے لیے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب یاد رکھو صاحب کافیہ نے جو کلام کی تعریف کی, الکلام ما تضمن کلمتین بالاسنادی, کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو, بالاسنادی کس کے ساتھ, اسناد, اسناد کے ساتھ, یعنی ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہو اور ایک مسند ہو, یعنی اسناد تام ہو ان دونوں کے درمیان. تو اس تعریف پر بعض شارحین فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ کی یہ تعریف پر اعتراض ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کہا, کلام وہ ہے جو متضمن ہوگا دو کلموں کو, یعنی دو کلموں پر مشتمل ہوگا, حالانکہ یہ جو ابھی آپ نے مثالیں کی ان پہ نظر رکھیں, زید قام ابوہ, ایک مسند ہے ایک مسند الیہ, لیکن کلمے دو ہیں یا دو سے زیادہ, دو سے زیادہ ہیں بھائی. زید قام ابوہ, زید ایک کلمہ, قام دوسرا کلمہ, ابوہ ابو ایک کلمہ, ہا ایک کلمہ, چار کلمے ہیں اس کے اندر. اور اسی طرح زید ابوہ قائم, اس کے اندر دیکھو زید ایک کلمہ, ابوہ مضاف مضاف الیہ, یہ دو کلمے یہ ہو گئے, اور قائم یہ چوتھا کلمہ, تو یہ کتنے ہو گئے اس میں بھی چار, اور زید قائم ابوہ اس کے اندر بھی چار کلمے ہیں. تو صاحب کافیہ کی تعریف مکمل نہیں. صاحب کافیہ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ الکلام ما تضمن کلمتین او اکثر بالاسناد, توجہ ہے جی, کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو یا زیادہ کو, بالاسناد کس کے ساتھ, اسناد کے ساتھ. تو صاحب کافیہ کو او اکثر کی قید بھی کلمتین کے ساتھ لگانی چاہیے تھی, تاکہ یہ والی جو مثالیں جو ابھی میں نے تین مثالیں لکھوائیں, تاکہ یہ بھی کلام کے اندر داخل ہو جاتی, کیونکہ ان کے اندر آپ غور کریں, زید ہے مسند الیہ اور آگے قام ابوہ, یہ سارا مسند بھی ہی ہے. توجہ ہے ذرا ان جملوں پر نظر رکھو, زید قام ابوہ, زید کیا ہے مسند الیہ, اور قام ابوہ یہ کیا ہے مسند بھی ہی ہے. تو اس میں دیکھو اسناد ہے لیکن دو کلمے نہیں ہیں بلکہ دو سے زیادہ. اسی طرح اگلے جملے پہ نظر رکھیں, زید ابوہ قائم, اس میں زید ہے مبتدا اور ابوہ قائم, یہ پورا جملہ یہ ہے مسند بھی ہی, زید ہے مسند الیہ اور ابوہ قائم یہ ہے مسند بھی ہی, تو یہ مسند بھی ہی ایک کلمہ نہیں ہے, ایک سے زیادہ ہیں. اور اسی طرح تیسرا جملہ, اس میں زید ہے مبتدا اور قائم ابوہ, یہ پورا مسند بھی ہی ہے اور یہ ایک سے زیادہ کلموں پر مشتمل ہے. تو صاحب کافیہ کو کیا کہنا چاہیے تھا, ما تضمن کلمتین او اکثر بالاسناد, کے کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہے دو یا زیادہ کلموں کو اسناد کے ساتھ. تو صاحب کافیہ کو او اکثر کی قید ذکر کرنی چاہیے تھی. لیکن صاحب جامی نے اور تقریر کی, صاحب جامی نے کیا تقریر کی تھی, دیکھو جہاں کلام کی تعریف آئی تھی, الکلام ما تضمن ای لفظ تضمن کلمتین حقیقتا او حکما, صاحب جامی نے کہا کہ اکثر کی قید لگانے کی ضرورت نہیں, بلکہ کلام ہمیشہ دو ہی کلموں سے ہوگا, ہاں وہ دو کلمے وہ عام ہیں, چاہے حقیقتن ہو چاہے حکمن ہو. اور یہ جو مثالیں آپ نے ذکر کی اس کے اندر, یہ جو مسند بھی ہی ہے یعنی دوسرا جز کلام کا, توجہ ہے ان تین جملوں پر نظر رکھیں, وہ فرماتے ہیں صاحب جامی کہ یہ حقیقتن تو ایک کلمہ نہیں, یہ جو مسند بھی ہی ہے इन तीन जुमलों में। लेकिन ये हुक्मन एक कलिमा है कि यह हुक्मन क्या है,
एक कलिमा
है, यानी ये सब मुफरद की तावील में है, ये सब क्या है मुफरद की तावील में है, यानी सब काइमुल अब की तावील में है, काइमुल अब की तावील में है। तवज्जो है, जरा आप ये जुमला भी नीचे लिखो ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। जैदुन काइमुल अबी, जैदुन काइमुल अबी, लिख लिया जी। तरकीब करें, देखें तरकीब देखें। जैदुन काइमुल अबी, जैदुन मरफू लफजान मुबतदा, कायमो मरफू लफजान इसमें फाइल मुजाफ, मरफू लफजान इसमें फाइल मुजाफ, मरफू है क्योंकि यह खबर है जैद की, लफजन है क्योंकि रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं काइमुल अबी, कायम पर क्या पढ़ रहे हैं रफा, और इसमें फाइल का सीगा है, और नीज ये मुजाफ है, अल अब आगे क्या रहा है मुजाफ इल है, तो काइमुल अब कायम मरफू लफजन मुजाफ सीगा इसमें फाइल, और इसमें फाइल के लिए हमेशा क्या चाहिए फाइल चाहिए, आगे कोई फाइल नहीं है, इस आगे कोई फाइल तो फिर इसी के अंदर क्या करेंगे जमीर निकालेंगे, तो इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल जो किसको राजे जैद को राजे है, और अल अब मजरूर लफजान मुजाफिल है, इसमें फाइल अपने फाइल यानी हुआ और मुजाफिले से मिलकर शिबे जुमला होकर यह खबर हुई किसके लिए जैद के लिए। तवज्जो है, तरकीब समझ में आ गई। कायमुन में हमने कौन सी जमीर निकाली हुआ, और अल अब को क्या बनाया मुजाफिले, और यह हुआ जमीर किसको राजे जैद को, यह रबत भी आ गया, तो इसमें फाइल अपने फाइल और मुजाफिले से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ जी। अब इसमें भी जरा दायरा लगा दें, जैद है मुबतदा और काइमुल अब, काइमुल अब इसके गिर्द भी दायरा लगाएं, यह है पूरी खबर भाई, यह है पूरी खबर। इसके अंदर भी इस्नाद है या नहीं, काइमुल अब के अंदर कायमुन का इस्नाद किसकी तरफ है, हुआ जमीर की तरफ, तवज्जो है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिफत के सीगे का इस्नाद होता है जमीर की तरफ, यह भी ला इस्नाद के दर्जे में होता है, इसको फिर भी मुफरत शुमार करते हैं भाई, क्या शुमार करते हैं मुफरत। तो ऊपर एक मिसाल में आया था जैदुन कायमुन अबूहू, उसमें कायमुन का इस्नाद अबूहू की तरफ था, वो मुफरत नहीं था, उसमें अबूहू दो कलिमे और साथ जुड़ रहे थे, लेकिन यहां पर काइमुल अब ये दोनों आपस में क्या है मुजा मुजाफिले तो हैं, लेकिन कायम के अंदर जो हुआ जमीर है उसके बावजूद ये किसके हुक्म में है मुफरत के हुक्म में है, इसको एक ही कलिमा शुमार करेंगे, दो कलिमे शुमार नहीं करेंगे। तो ये है खबर, ये है खबर। और जरा फर्क देखो, ऊपर वाली जो तीन मिसालें थी, पहली मिसाल क्या जैदुन कामा अबूहू, इसमें खबर क्या है काम अबूहू, इसके अंदर इस्नाद है या नहीं इस्नाद है, खबर के अंदर इस्नाद है। दूसरी मिसाल पे आओ, जैदुन अबूहू कायमुन, इसमें खबर क्या अबूहू कायमुन, ये सारी खबर है जैदुन के लिए, और इस खबर में भी क्या है इस्नाद है। तीसरी मिसाल में आ जाओ, जैदुन कायमुन अबूहू, इसमें भी इसमें खबर क्या है कायमुन अबूहू, और इसके अंदर भी क्या है इस्नाद है इसमें जाहिर की तरफ, जबकि जैदुन काइमुल अब इसमें इस्नाद तो है लेकिन हुआ जमीर की तरफ है, और वो इस्नाद भी गोया क्या है ला इस्नाद की तरह, उसको शुमार ही ना करें। तो गोया ये काइमुल अब ये है मुफरद, ये क्या है मुफरद है, और ऊपर वाले तीनों क्या थे वो मुरक्कब थे, वो क्या थे मुरक्कब थे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, بعض شارحین نے کیا تقریر کی کہ صاحب کافیہ کو کیا کرنا چاہیے تھا، او اکثر کی قید لگانی چاہیے تھی تاکہ زید قام ابوہ، زید ابوہ قائم، اور زید قائم ابوہ، یہ والی مثالیں بھی اس میں داخل ہو جاتی کیونکہ ان کے اندر دو کلمے نہیں ہیں، دو سے زیادہ ہیں. جبکہ صاحب جامی نے اور تقریر کی، انہوں نے کہا او اکثر کی قید لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کلمتین اس کو اس میں عموم پیدا کر دو، کلمتین عام ہیں، چاہے حقیقتاً دو کلمے ہوں چاہے حکمن دو کلمے ہوں. تو اب یہ سب صورتیں آ گئیں اس کے اندر، کیونکہ قام ابوہ یہ حقیقتاً تو ایک کلمہ نہیں لیکن حکمن ایک کلمہ ہے، یہ قائم الاب کے معنی میں ہے. یہ قام اب زید قام ابوہ، یہ قام ابوہ کس معنی میں ہے؟ یہ قائم الاب کی تاویل میں ہے. اسی طرح زید ابوہ قائم، یہاں بھی ابوہ قائم کس معنی میں ہے، کس تاویل میں ہے؟ قائم الاب کی تاویل میں ہے. اور تیسرا ہے زید قائم ابوہ، یہ بھی کس تاویل میں ہے؟ قائم الاب کی تاویل میں ہے. تو یہ حقیقتاً تو کلمہ ایک نہیں ہے لیکن حکمن ایک ہی کلمہ ہے، یعنی یہ جو مسند بھی ہے ان تمام جملوں میں وہ حکمن ایک ہی کلمہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو کلام وہ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ، اور وہ دو کلمے عام ہیں، چاہے حقیقتاً دو کلمے ہوں چاہے حکمن. اور ان مثالوں کے اندر یہ جو پہلی تین مثالیں تھیں ان میں حقیقتاً تو دو کلمے نہیں زیادہ ہیں لیکن حکمن دو کلمے ہیں، کیونکہ جو مسند بھی ہی ہے وہ قائم الاب کی تاویل میں، یعنی مفرد کی تاویل میں ہے. بھائی کس کی تاویل میں ہے؟ مفرد کی تاویل میں ہے. بھائی دیکھیے اب کتاب پر، بھائی کہتے ہیں وحیث کانت الکلمتان اعم من ان تکونا کلمتین حقیقتا او حکما، وحیث اور چونکہ کانت الکلمتان اعم من ان تکونا کلمتین حقیقتا او حکما، کہتے ہیں چونکہ وہ جو دو کلمے تھے کس میں، جو کس میں ذکر ہوئے؟ کلام میں. کلام میں کہتے ہیں اور چونکہ وہ دو کلمے جو ہیں وہ عام ہیں اس سے کہ وہ دو کلمے حقیقتاً ہوں یا حکم. کہتے ہیں بھائی وہ جو دو کلمے جو کہاں ذکر ہوئے تھے کلام کی تعریف میں، ہم نے وہیں پر آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ دو کلمے عام ہیں چاہے حقیقتاً ہوں یا حکمن. تو کہتے ہیں چونکہ وہ دو کلموں کا کلمہ ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، تو دخل فی التعریف، تو لہذا تعریف میں داخل ہو گئی یہ والی مثالیں میں، مثل زید ابوہ قائم، یہ بھی تعریف میں داخل ہو گئی، یہ بھی کلام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کس طرح کلام ہے؟ زید ابوہ قائم پر ذرا نظر رکھیں جو مثال کتاب کے اندر ہے. بھائی تعریف کیا کی انہوں نے؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ جو دو کلموں کو متضمن ہو. اس کے اندر زید یہ تو ایک کلمہ ہے اور ابوہ قائم یہ پورا جملہ خبر بن رہا ہے، لیکن یہ ایک کلمے کی تاویل میں ہے، تو یہ حکمن ایک کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ حکمن ایک کلمہ ہے، تو یہ بھی اس میں داخل ہوا. تو یہ بھی اس میں داخل ہوا. او قام ابوہ، اس کے لیے زید مبتدا الگ نکال لو، مبتدا ایک دفعہ ذکر کر دیا، باقی اسی خبر پر عطف کر رہے ہیں. یہ دیکھو زید مبتدا ہے، ابوہ قائم اس کی خبر. او قام ابوہ، یہ خبر پر خبر کا عطف کیا، تو زید قام ابوہ یہ دوسری مثال آ گئی. تیسرا او قائم ابوہ، یہ پھر خبر پر خبر کا عطف کر دیا، زید ایک ہی دفعہ ذکر ہے مبتدا، تو زید قائم ابوہ. یہ سارے بھی کلام کی تعریف میں داخل ہو گئے. کیوں بھائی؟ کیسے داخل ہوئے؟ یہ تو دو کلمے نہیں ہیں، دو سے زیادہ ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَخْبَارَ فِيهَا، اس لیے کیونکہ ان کے اندر جو خبریں ہیں، مَعَ أَنَّهَا مُرَكَّبَاتٌ، باوجود اس کے کہ وہ خبریں مرکب ہیں. وہ خبریں کیا ہیں؟ مرکب، یعنی ان میں جو مسند بھی آ رہا ہے ان سب جملوں میں وہ مرکب ہے. لَكِنَّهَا فِي حُكْمِ الْكَلِمَةِ الْمُفْرَدَةِ، لیکن یہ سب مفرد کلمہ کے حکم میں ہیں. اعنی قائم الاب، یعنی کہ قائم الاب کے حکم میں ہیں. کس کے حکم میں؟ تو یہ سب کس کے حکم میں ہوئے؟ قائم الاب. اور قائم الاب پہ نظر رکھیں، قائم الاب کے اندر جو قائم ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے یا نہیں، اور اس کی طرف قائم کا اسناد بھی ہے، لیکن وہ اسناد لا اسناد کی طرح شمار ہوتا ہے، یعنی یوں کہ وہ ضمیر بھی لا ضمیر کی طرح شمار ہوتی ہے، گویا یہ اکیلا ایک ہی لفظ ہے. تو یہ سارے کس تاویل میں ہیں؟ قائم الاب, گویا یہ سب زید قائم الاب کی تعویل میں ہیں. اس پر آپ کے ذہنوں میں پھر اشکال آئے گا, ادھر دیکھو بھائی اچھی طرح سمجھ لو, اس پر آپ کے ذہنوں میں پھر اشکال آئے گا کہ قائم الاب بھی تو دو کلمے ہیں, ایک قائم مضاف ہے, چلو ہوا ضمیر کا اعتبار نہیں کرتے ہم, لیکن ایک قائم مضاف ہے اور ایک الاب مضافون الیہ, یہ تو پھر بھی کیا ہیں, دو کلمے ہیں. تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی یہاں یہ اصل خبر قائم ہے, اصل خبر کیا ہے, قائم ہے, الاب خبر نہیں ہے, وہ تو مضاف الیہ بن رہا ہے بھائی, توجہ ہے, خبر الاب نہیں ہے, خبر تو کیا ہے قائم, اور قائم خود مفرد ہے کہ مرکب ہے, وہ تو مفرد ہے, تو یہاں ہم خبر کی بات کر رہے ہیں, گویا کلام صرف زید قائم الاب, اس میں کلام صرف زید اور قائم سے مل کر ہو رہا ہے, اب جو ہے وہ تو مضاف الیہ ہے قائم کا بھائی, وہ مراد یہاں پر نہیں ہے, وہ صرف ایک قید کے طور پر آیا ہے, وہ قیام کے لیے قید بن رہا ہے, تو وہ قید یہاں مراد نہیں ہے, صرف یہ ساتھ ذکر تو ہے لیکن خبر صرف کیا بن رہی ہے, قائم کا لفظ خبر بن رہا ہے. جبکہ باقی مثالوں پہ ذرا نظر رکھو جو میں نے کاپی پر لکھوائیں, ان میں دیکھو خبر وہ کیا بن رہی ہے, پہلے جملے میں زید قام ابوہ, یہ قام ابوہ سارا یہ خبر بن رہا ہے, اس سارے جملے کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف, زید کی طرف. اگلے جملے میں زید ابوہ قائمن, یہ ابوہ قائمن پورے جملے کا اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف, اور اسی طرح اسی اگلے جملے میں زید قائمن ابوہ, یہ پورے قائمن ابوہ کا اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف. تو لہذا وہاں پر جو مسند بھی ہی ہے وہ مرکب ہے, مفرد نہیں ہے, اور ان میں اسناد بھی ہے, جبکہ یہاں پر قائم الاب کے اندر مسند صرف کیا ہے, قائم ہے, قائم ہے بھائی, تو الاب کا اعتبار نہیں, وہ صرف مضاف الیہ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی, دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے, کہتے ہیں وحیث کانت الکلمتان اعم من ان تکونا کلمتین حقیقتا او حکما, اور کہتے ہیں چونکہ وہ دو کلمے جو ہیں وہ عام ہیں اس سے کہ وہ حقیقتا دو کلمے ہوں یا حکمان, تو داخل ہو گیا تعریف کے اندر مثل زید ابوہ قائم, اس جیسی مثالیں, اور اسی طرح قام ابوہ ای زید قام ابوہ, اس جیسی مثالیں بھی اس کلام کی تعریف میں داخل ہو گئیں, او قائم ابوہ ای زید قائم ابوہ, اس جیسی مثالیں بھی داخل ہو گئیں. فإن الأخبار فيها, اس لیے کیونکہ ان کے اندر خبریں جو ہیں یعنی مسند بھی ہی جو ہے, مع انها مرکبات, باوجود اس کے یہ خبریں کیا ہیں, مرکب ہیں, لیکن نہا فی حکم الکلمۃ المفردۃ, لیکن یہ سب مفرد کلمہ کے حکم میں ہیں, اعنی قائم الاب, یعنی کہ قائم الاب کے حکم میں ہیں. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو صاحب جامی نے بتلایا کہ ما تضمن کلمتین کے اندر جو کلمتین آیا وہ عام ہے, چاہے حقیقتاً وہ ہو دو کلمے یا حکمن ہو, اور یہ جو سارے ہیں یہ بھی حکمن دو کلمے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. شارح جامی کی بات کو اور زیادہ بہتر لفظوں میں بعض شارحین نے ذکر کیا, وہ فرماتے ہیں کہ حکمن کلمہ ہونے کا معنی یہ ہے, حکمن کلمہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مسند الیہ یا مسند بھی بن سکے, کہ وہ مسند الیہ یا مسند بھی بن سکے. بس دیکھو آسان تعریف ہو گئی, سارے اشکالات ختم ہو گئے. اب ذرا ان مثالوں پہ نظر رکھو, زیدن قام ابوہ, یہ دو کلمے ہیں, کس طرح زیدن یہ تو ہے ایک کلمہ, اور قام ابوہ یہ سارا کیا بن رہا ہے, خبر یعنی مسند بھی بن رہا ہے, تو یہ حکمن کیا ہے, ایک کلمہ ہے, توجہ ہے, تو حکمن کلمہ ہونے کا کیا معنی کہ وہ مسند الیہ یا مسند بھی بن سکے, اور قام ابوہ یہ سارا جملہ کیا بن رہا ہے, یہ مسند بھی بن رہا ہے, تو یہ حکمن ایک کلمہ ہے. اسی طرح زید ابوہ قائم, اس کے اندر زید ہے مبتدا اور ابوہ قائم, یہ پورا جملہ کیا ہے, مسند بھی بن رہا ہے, تو یہ حکمن ایک کلمہ ہے بھائی. اسی طرح زید قائم ابوہ, زید ہے مبتدا قائم ابوہ, یہ سارا مسند بھی یعنی خبر بن رہا ہے, تو یہ ایک کلمہ ہے بھائی, حکمن یہ سارے کیا ہیں, تو حکمن کلمہ ہونے کا کیا مطلب, मुस्नद इलै या मुस्नद भी ही बन सके। भाई अजीब तकरीर, अजीब लफ्जों से बयान किया किसी ने, सारे इश्कालात खत्म हो गए। इजरिब के अंदर अंता जमीर आपने निकाली थी, वो अंता भी क्या बन रही थी, मुस्नद इलै बन रही थी, तो वो भी हुक्मन कलीमा है। ला तजरिब के अंदर कौन सी जमीर थी, अंता जमीर, वो भी क्या बन रही थी, मुस्नद इलै बन रही थी, तो हुक्मन कलीमा किसे कहेंगे कि जो मुस्नद इलै या मुस्नद बिही बन सके। अब चाहे वो नियत में हो लेकिन बन तो रहा है मुस्नद इलै या मुस्नद बिही, तो वो भी दाखिल, और ज्यादा कलीमे हैं लेकिन बन क्या रहा है, मुस्नद इलै या मुस्नद बिही बन रहा है, वो भी इसके अंदर दाखिल हो गया। ये ताबीर हमेशा याद रखना कि हकीकतन कलीमा तो है जैद, अमर, बकर, और हुक्मन कलीमा किसे कहेंगे, जो मुस्नद इलै या मुस्नद बिही बन सके। इन मिसालों में देखो आप, ये जितनी मिसालें गुजरी इनमें मुस्नद बिही कई कलीमों पर मुश्तमिल था, कई कलीमों पर, लेकिन हुक्मन एक कलीमा था क्योंकि वो मुस्नद बिही बन रहा था। तो जो भी मुस्नद बिही है वो हुक्मन एक कलीमा है। इसी तरह वो जो आपने वजह हसर पड़ी भाई, लिअन्नहा इम्मा तदुल्ला अला मानन फी नफ्सिहा औला, कि कलीमा या तो ऐसे माना पर दलालत करेगा जो उसकी जात में होगा या नहीं करेगा। जरा इबारत निकालें, इबारत निकालें, फिर आपको बात समझ में आएगी। इबारत निकाल ली, अल कलीमा तो हियस्मु व फिअलु व हर्फुन लिअन्नहा इम्मा तदुल्ला अला मानन फी नफ्सिहा औला, कि कलीमा या तो वह अपने माना पर खुद दलालत करेगा या नहीं करेगा। यहां देखो साहिब जामी ने इम्मा मिन सिफतिहा अंतदुल्ला, यह मिन सिफतिहा निकाला था, मिन सिफतिहा यह है खबर मुकदम, और अंतदुल्ला अला मानन फी नफसिहा, यह अंतदुल्ला, यह अन फेल पर दाखिल होकर उसको मस्तर के माना में कर देता है, तो यह सारा मुब्तदा है। अंतदुल्ला अला मानन फी नफसिहा यह सारा क्या है, मुब्तदा, और मिन सिफतिहा क्या है, खबर है, तवज्जो है, खबर है, मुकद्दम है। तो अब देखो मुब्तदा में भी कई लफ्ज और खबर में भी कई लफ्ज, लेकिन ये हुक्मन दो कलीमे ही हैं, क्योंकि मिन सिफतिहा यह सारा अपने मुतालिक से मिलकर क्या बनेगा, खबर है मुकद्दम, यह मुस्नद भी ही बनेगा, तो यह हुक्मन एक कलीमा हुआ। और अंतदुल्ला अला मानन फी नफसिहा यह सारा भी, यह सारा क्या बनेगा, यह मुब्तदा बनेगा, तो यह भी हुक्मन क्या है, एक ही कलीमा है। बात समझ में आ गई। तो हुक्मन कलीमा किसे कहेंगे, जो मुस्नद या मुस्नद इले बन सके, वो हुक्मन एक ही कलीमा है। आगे देखिए, व दखला फीही अयजन मिसलु जसकुन मोहमलू व दैजुन मखलूब ज़ैदिन मा अन्नल मुस्नद इलैही फीहिमा मोहमलुन लैस बिकलिमतिन फइन्नहु फी हुक्म हाज़ल लफ्ज़। साहिब जामी ने बतलाया था कि दो कलीमे आम हैं, चाहे हकीकतन दो कलीमे हों या हुक्मन दो कलीमे हों। कहते हैं हमारी इस तकरीर से जसकुन मोहमलुन ये जुमला भी कलाम के अंदर दाखिल हो गया, और दैजुन मकलूब ज़ैदिन ये भी कलाम में दाखिल हो गया। ये जुमला लिखो जरा अपने सामने कापी पर भाई, जसकुन मोहमलुन, जसकुन मोहमलुन, इसे निचली सतर में लिखें, दैजुन, दैजुन दाल या जा, दैजुन मकलूब ज़ैदिन, मकलूब ज़ैदिन। दरअसल यहां इश्काल होता है कि आपने कलाम की क्या तारीफ की, मातजमना कलिमतैन, जिसमें कितने कलिमे होंगे, दो कलिमे होंगे, आपकी इस तारीफ से इस तरह के जुमले निकल गए, जसकुन मोहमलुन जैसे जुमले भी निकल गए और दैजुन मकलूब ज़ैदिन जैसे जुमले भी निकल गए। किस तरह, जरा इन पर नजर रखें, जसकुन मोहमलुन, याद रखो जसक ये मोहमल लफ्ज है, इसका कोई माना नहीं, वैसे ही जुबान से एक लफ्ज अदा कर दिया जसकुन, अरबी जुबान में ये लफ्ज नहीं है, तो वैसे ही एक लफ्ज बोल दिया जसकुन। अब मुझे बताओ इसका कोई माना है, माना नहीं, तो ये कलीमा हुआ या मोहमल हुआ, कलीमा तो कहते हैं बा माना लफ्ज को, तो ये कलीमा नहीं, ये तो क्या है, मोहमल। और अगला लफ्ज है मोहमलुन, मोहमलुन ये अरबी जुबान का लफ्ज है, मोहमल किसे कहते हैं, जिसका कोई माना ना हो। तो जसकुन मोहमलुन, जसकुन है मुब्तदा और मोहमलुन उसकी खबर, तवज्जो है। तो ये दो दो लफ्ज हैं लेकिन इनमें से जसकुन वो कलीमा नहीं और मोहमलुन एक कलीमा है एक कल, तो ये तो एक ही कलीमे से कलाम हासिल हो रहा है। आपने तो क्या कहा था मातजमना कलीमा तैन, इसमें तो मोहमलुन तो कलीमा है, जसकुन वो तो मोहमल है वो तो कलीमा नहीं है। जसकुन मोहमलुन का क्या माना, ये पूरा कलाम है पूरी बात है, जसक मोहमल है यानी जसक का लफ्ज का कोई माना नहीं है, ये देखो इसमें पूरी बात है। तो ये तो कलाम की तारीफ से खारिज हो गया, कहते हैं नहीं भाई ये भी कलाम की तारीफ में दाखिल है क्योंकि हमने क्या कहा वो कलीमे आम हैं, वो दो कलीमे चाहे हकीकतन हो चाहे हुक्मन, ये जसकुन ये हकीकत में तो कलीमा नहीं लेकिन हुक्मन ये भी एक कलीमा है। गोया हम ये कहने वाला दूसरे को ये बता रहा है जब उसने ये कहा जसकुन मोहमलुन के जसक मोहमल है, वो कहना ये चाहता है हाज़ल लफ्ज़ मोहमलुन, ये जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं ये क्या है मोहमल है, तो जसकुन किस तावील में है हाज़ल लफ्ज़ की तावील में है, ये जो लफ्ज़ मैं बोल रहा हूं हाज़ल लफ्ज़ मोहमलुन ये वाला लफ्ज़ मोहमल है, कौन सा लफ्ज़ जसकुन जो मैं बोल रहा हूं। तो जब मैंने कहा जसकुन मोहमलुन तो दरअसल मैंने गोया क्या कहा आपको कि हाज़ल लफ्ज़ ये वाला जो लफ्ज़ है यानी जसकुन मोहमलुन ये क्या है मोहमल, तो जसकुन किस तावील में है हाज़ल लफ्ज़ की तावील में है, और हाज़ल लफ्ज़ कलीमा है या नहीं है, ये कलीमा है बात समझ में, बल्कि सिर्फ हाज़ा की तावील लफ्ज़ लफ्ज़ तो वजाहत के लिए कर दिया हाज़ा मोहमलुन ये क्या है मोहमल है यानी ये वाला लफ्ज़, तो ये हाज़ल लफ्ज़ की तावील में है। इसी तरह दैज़ुन मक़लूबु ज़ैदिन, दैज़ इसका अरबी जुबान में कोई माना नहीं, ये उसी जैद को उलट दिया, जैद में जा पहले थी और दाल आखिर में, अब दाल को शुरू में ले आए जा को आखिर में ले गए, क्या बन गया दैज, ये किसको उल्टाया जैद को, तो यही बता रहे मक़लूबु ज़ैदिन ये जैद का उल्टा है, दैज़ुन मक़लूबु ज़ैदिन दैज जो है वो जैद का उल्टा है यानी इसी जैद को उल्टाया गया है भाई। अब देखो इसमें भी देख लो मुब्तदा क्या दैज़ुन और मक़लूबु ज़ैदिन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मिलकर ये क्या बन रहे हैं खबर बन रहे हैं, तवज्जो है, तो ये खबर बन रहे हैं तो इश्काल होता है कि ये तो दैज जो है वो तो मोहमल है वो तो कलीमा ही नहीं है, तो अकेले एक ही कलीमे से गोया मक़लूबु ज़ैदिन मक़लूबु मक़लूब तरकीब कैसे होगी जरा तरकीब सुनो दैज़ुन मक़लूबु ज़ैदिन दैज़ुन मरफू लफ्जान मुब्तदा मक़लूबु मरफू लफ्जान मुजाफ सीगा इसमें मफूल और इसमें मफूल के लिए क्या चाहिए नाई फाइल, तो इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका नाई फाइल जो किसको राजे दैस को राजे खबर को किससे जोड़ते हैं मुब्तदा से और मुजाफ है ये, तो ये मक़लूब मुजाफ और ज़ैदिन मुजाफोन इले इसमें मफूल अपने नाई फाइल और मुजाफिले से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर किसकी दैज की मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, तो इसमें खबर सिर्फ क्या है मक़लूब है क्या है मक़लूब। और मक़लूब के अंदर जमीर है लेकिन मैंने बताया सिफत के सीगे के अंदर जब जमीर हो गोया के वो ला जमीर है गोया वो उसका एतबार ही नहीं, तो ये मक़लूब मुफरद है, तो मक़लूब खबर बना और दैज मुब्तदा बना, तो दो लफ्ज तो हैं लेकिन इनमें से दैस का तो कोई माना नहीं वो तो कलीमा नहीं वो तो मोहमल है, और मक़लूब का माना है कि यानी उल्टाया हुआ उल्टा किया हुआ, तो एक ही कलीमे से क्या बन रहा है कलाम बन रहा है, और जैद वो तो मुजाफिले है भाई बात समझ में आ गई ना, वो मुस्नद बन रहा है ना मुस्नद इले बन रहा है, तो लिहाजा एक ही कलीमे से कलाम हासिल हुआ, दैस तो कलीमा ही नहीं है, तो उसका भी जवाब गुजर गया कि दैस किस तावील में है हाज़ल लफ्ज़ के, जब मैंने आपसे कहा दैज़ुन मक़लूबु ज़ैदिन तो गया मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह वाला जो लफ्ज़ है यानी दैज यह मक़लूबु ज़ैदिन यह जैद का उल्टाया हुआ लफ्ज़ है जैद को उल्टा किया हुआ है, तो यहां भी दैस किस तावील में हुआ हाज़ल लफ्ज़, तो दैस हकीकत में तो कलीमा नहीं लेकिन हुक्मन क्या है कलीमा है क्योंकि हाज़ल लफ्ज़ की तावील में है। देखिए भाई किताब पर कहते हैं व दखल फीही अयसन मिसलु जसकुन मोहमलुन व दैज़ुन मक़लूबु ज़ैदिन, और नीस कलाम की तारीफ में इस जैसी मिसालें भी दाखिल हो गई जसकुन मोहमलुन और दैज़ुन مقلوب زیدین یہ بھی کلام کی تعریف میں داخل ہو گئے. مع ان المسند الیہ فیہ امام محمل, باوجود اس کے کہ ان دونوں جملوں کے اندر جو مسند الیہ ہے وہ محمل ہے, یعنی جسق بھی محمل اور دیز بھی محمل ہے. لیس بکلمتین, وہ کلمہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کلام کی تعریف میں داخل ہو گیا. کیوں داخل ہوا؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ فِي حُکْمِ هَذَا اللَّفْزِ, کیونکہ یہ جو ہے ہاز اللفظ کے حکم میں ہے, ہاز اللفظ کے حکم میں ہے, تو یہ حکمن کلمہ ہے. یہ فا کا ترجمہ میں نے کیونکہ کے ساتھ کیا بھائی, کیونکہ آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ فا کبھی علت بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ کیونکہ یا اس وجہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. پھر ترجمہ دیکھ لیں تو کہتے ہیں ودخل فیہ ایزن مثل جسق محمل ودیز مقلوب زیدین, اور کلام کی تعریف کے اندر جسق محمل اور دیز مقلوب زیدین جیسی مثالیں بھی داخل ہو گئیں. مع ان المسند الیہ فیہ امام محمل, باوجود اس کے کہ مسند الیہ ان دونوں جملوں کے اندر وہ محمل ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو ان دونوں جملوں میں مسند الیہ محمل ہے, لیس بکلمتن, وہ کلمہ نہیں ہے. فَإِنَّهُ فِي حُکْمِ هَذَا اللَّفْزِ, کیونکہ یہ جو ہے یہ مسند الیہ جو ہے هَذَا اللَّفْز کے حکم میں ہے. اعلم ان کلام المصنف رحمه الله تعالی ظاهر في ان نحو ضربت زيدا قائما بمجموعه كلام بخلاف كلام صاحب المفصل حيث قال الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى فإنه صريح في أن الكلام هو ضربت والمتعلقات خارجة عنه. والمتعلقات کا عطف ہے الکلام پر اور وہ ان کا اسم ہے, تو المتعلقات یہ بھی کیا ہے, ان کا اسم منصوب ہوگا اور یہ جمع مؤنث سالم ہے, اور جمع مؤنث سالم کا نصب کس شکل میں آتا ہے, کسرہ کی صورت میں, تو اس لیے میں نے پڑھا والمتعلقات خارجت عنہ. اچھا بھائی اب ایک اور جملہ اپنے سامنے ذرا لکھیے بھائی, ضربت زیدن قائمن, ضربت زیدن قائمن, بلکہ فی الدار بھی آگے لکھ لیں, فی الدار فی الدار, ضربت زیدن قائمن فی الدار. ترکیب سنو, ترکیب بھائی, ضربت فعل با فاعل, تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل, زیدن منصوب لفظن مفعول بھی, قائمن یہ حال ہے بھائی, اور اس کو آپ چاہیں زیدن سے حال بنا دیں اور آپ چاہیں تو آپ اس کو ضربت کی تا ضمیر سے حال بنا دیں. اگر ضربتو کی تا ضمیر سے حال بنائے تو ترکیب اس طرح ہوگی کہ ضربتو کی تا ضمیر جو مسند الیہ ہے وہ بن جائے گی ذوالحال, اور قائمن منصوب لفظن صیغہ اس میں فاعل. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے. اس کے اندر انا ضمیر, میں نے بتایا تھا صفت کے صیغے کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑیں اس کے اندر بھی وہی ضمیر نکالیں گے. آپ اس کو ضربتو کی تا ضمیر سے جوڑنا چاہتے ہیں اور وہ متکلم کی ضمیر ہے, تو قائمن میں بھی کون سی ضمیر نکالیں گے؟ متکلم. اور تو یہ ربط آ گیا کہ جس ضمیر سے جوڑنا چاہتے ہیں وہی ضمیر اس کے اندر بھی آ گئی. آپ کہیں گے بھائی جوڑنا تو ہم ضربتو کی تا سے چاہتے ہیں اور اس کے اندر انا آ گئی, بھائی دونوں ایک ہی ضمیر ہے, ضربتو کی تا سے بھی متکلم مراد اور انا سے بھی متکلم مراد, صرف فرق اتنا ہے کہ ضربتو کی تا متصل ہے اور انا منفصل ہے, وہ ضمیر متصل ہے یہ ضمیر منفصل ہے. تو قائمن منصوب لفظن صیغہ اس میں فاعل, اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل, تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ حال بنے گا. اور پھر داری فی جارہ, اداری مجرور لفظن, جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ ضربتو سے متعلق. کس سے؟ پٹائی کی. میں نے کہاں پر کی؟ گھر میں کی. اچھا تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ ضربتو کی تا جو ہے یہ ذوالحال ہے اور قائمن اسے حال, تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل بن گیا کس کے لیے؟ ضربتو کے لیے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی और मुतालिक से मिलकर जुमला फिअलिया खबरिया हुआ। ज़रबतु ज़ैदन क़ाइमन फिद्दारी, मैंने जैद की पिटाई की घर में, इस हाल में कि मैं खड़ा हुआ था, इस हाल में कि मैं खड़ा हुआ था। और आप चाहें तो क़ाइमन को जैद से हाल बना दें, इस सूरत में ज़ैदन बनेगा ज़ुलहाल और क़ाइमन मंसूब लफ्जन सीगा इसमें फाइल, और इसके अंदर अब हुआ जमीर निकालेंगे क्योंकि जैद इसमें जाहिर है और इसमें जाहिर किसके दर्जे में होता है, गायब के दर्जे में। तो हुआ जमीर, हुआ जमीर मरफू महलन, इसका फाइल जो किसको राजे जैद को, इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर हाल, बाकी तरकीब सारी उसी तरह होगी। अब देखो जरा इस जुमले पे गौर करो, जरब तो जैदन कायमन फिदारी, ये कौन सा जुमला है, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया के अंदर फेल जो होता है वो मुस्नद बिही होता है और जो फाइल या नाई फाइल हो वो मुस्नद इले। तो जरब तो के अंदर ये जो जराबा फेल आया ये मुस्नद बिही, और ये जो ताजमीर आई ये क्या है, मुस्नद इले। तो ये कलाम तो मुस्नद और मुस्नद इले से पूरा हो जाता है। फिर आगे जो मुतअल्लिकात आते हैं फेल के, ये जो मफूल बिही है, मफूल लहू है, मफूल माहू है वगैरह, हाल तमीज है, जार मजरूर वगैरह, जितनी चीजें आती हैं, तो ये भी कलाम में दाखिल हैं या दाखिल नहीं, क्योंकि कलाम की तारीफ इन्होंने क्या की, अल कलामो मातजमना कलिमतैन बिल इस्नादी, कलाम वो लफ्ज है जो मुतजमिन हो दो कलिमों को, बिल इस्नादी इस्नाद के साथ। तो इस्नाद तो जरबतु की जराबा और ता के अंदर है, तो ये बाकी जैदन जो मफूल भी ही है, कायमन जो हाल है, फिदार जार मजरूर है, या इसी तरह मफूल फी आ जाए, मफूल लहू आ जाए, मफूल मुतलक आ जाए, मफूल माहू वगैरह, जितनी भी चीजें आगे मनसूबात वगैरह जिक्र हो जाए, तो वो क्या वो भी कलाम में दाखिल हैं या नहीं। कहते हैं आपको बतलाएंगे कि भाई साहिब काफिया ने कलाम की जो तारीफ की उसमें कोई हसर नहीं जिक्र किया। अगर वो कहते ना कलिमतैन फकत, सिर्फ दो कलिमे हों, तो फिर तो ये सारे कलाम से क्या हो जाते, खारिज। सिर्फ कलाम मुस्नद और मुस्नद इलैह का नाम है कलाम, बाकी जो चीजें जुड़ रही हैं उनका नाम कलाम नहीं, वो कलाम के अंदर दाखिल नहीं। तो लेकिन साहिब काफिया ने कोई ऐसी कैद वगैरह जिक्र नहीं की, तो जाहिर यही मालूम होता है उनके कलाम से कि उनके नजदीक ये जो मुतअल्लिकात होते हैं फेल वगैरह के, ये कलाम के अंदर दाखिल हैं, ये सारा कलाम है। ज़रबतु ज़ैदन क़ाइमन फिद्दारी, ये सारा क्या है, कलाम। लेकिन साहिब मुफस्सल ने जो तारीफ की है, अल्लामा ज़मख़शरी ने, जिनसे ये काफिया अखज की गई है, उन्होंने अपने कलाम में हसर जिक्र किया है। वो कलाम की तारीफ करते हैं, देखो एक सतर बाद उनकी तारीफ आ रही है, उस पर जरा नजर रखें। अल कलाम हुवल मुरक्कबु मिन कलिमतैनी उस्निदत इहदाहुमा इलल उखरा। अल कलाम हुवल मुरक्कबु, देखो खबर को भी मारिफा ले आए, अल मुरक्कब, और खबर भी मारिफा हो तो किस चीज का फायदा देती है, हसर का। तो कलाम वो मुरक्कब ही है मीन कलिमतैनी, दो ऐसे कलिमों से, ये कलिमतैन नकिरा है और उस निदात उसकी सिफत है, वो कलाम वो मुरक्कब ही है दो ऐसे कलिमों से कि उनमें से एक का इस्नाद किया गया हो दूसरी की तरफ। मालूम हो उनके नजदीक कलाम सिर्फ मुस्नद इले और मुस्नद बिही का नाम है, बाकी जो मुतअल्लिकात हैं वो कलाम से खारिज हैं। तो यहां से फर्क बतला दिया, साहिब काफिया की तारीफ आम है, उन्होंने कोई हसर वगैरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो उनके नजदीक मुतअल्लिकात फेल वगैरह भी कलाम के अंदर दाखिल हो गए। बात समझ में आ गई। और जबकि साहिब मुफस्सल की तारीफ के मुताबिक ज़रबतु ज़ैदन क़ाइमन फिद्दारी, इसके अंदर सिर्फ ज़रबतु कलाम है, ज़ैदन क़ाइमन फिद्दारी ये सारे क्या हैं, कलाम से खारिज हैं, जबकि साहिब काफिया के नजदीक ये भी कलाम में दाखिल हैं। भाई देखिए भाई किताब पर, एलम तू जान ले, अन्न कलाम अल मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला ज़ाहिरुन फी अन्न नहवा ज़रबतु ज़ैदन क़ाइमन, कि तू जान ले कि मुसन्निफ रहमहुल्लाह का कलाम जाहिर है इस बारे में कि ज़रबतु ज़ैदन क़ाइमन जैसी मिसालें जो हैं, बिमजमूई ही कलाम उन, कि ये सारा मजमूआ क्या है, کلام ہے صاحب کافیہ کے کلام سے ظاہر یہی ہے, بخلاف کلام صاحب المفصلی, بخلاف صاحب مفصل کے کلام کے, حیث قال اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا ہے, انہوں نے کلام کی تعریف کی ہے, الکلام هو المرکب من کلمتین کہ کلام جو ہے وہ مرکب ہی ہوتا ہے, من کلمتین دو ایسے کلموں سے, اسندت احداہما الی الاخرى کہ ان میں سے ایک کا اسناد کیا گیا ہو دوسری کی طرف, فانه صریح صاحب مفصل کا یہ کلام جو ہے صریح ہے, صریح ہے یعنی صاف لفظوں میں اس میں یہ بات ذکر ہے, تو یہ کلام صریح ہے, فی ان الکلام ہوا ضربتو کہ کلام جو ہے وہ صرف ضربتو ہے, والمتعلقات خارجت عنہ اور جو اس کے متعلقات ہیں یعنی زیدن قائمن اور فی الدار وغیرہ یہ سب کلام سے خارج ہیں, یہ سب کلام سے خارج ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, چلیے بس کرتے ہیں, بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی, چلیے بس بھائی. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.